ओम शांति। प्यार से बोलेंगे सभी एक बार एक साथ ओम शांति। आज वैसे मानो तो त्रिवेणी संगम है, विशेष दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। आज आप सभी को ओणम की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज पूरा भारत शिक्षक दिवस मना रहा है, टीचर्स डे, उसकी भी आप सभी को परम शिक्षक परमात्मा की ओर से बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, बधाई हो आप सभी को। साथ ही साथ आज हमारे मुसलमान भाइयों का ईद मिलाद भी है, तो आज त्रिवेणी संगम है। ऐसे पवित्र शुद्ध दिन पर अरावली पर्वत श्रेणी के इस स्थान पर हम एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स के लिए मेडिटेशन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप सब आमंत्रित हैं। आप सभी का इस कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में हार्दिक स्वागत है, शुभ स्वागत है आप सभी का। मैं इस उद्घाटन सत्र में मंच को सुशोभित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, जो पहले हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हमारी इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग की चेयरपर्सन, डायरेक्टर ऑफ ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव दिल्ली एनसीआर, आदरणीय राजयोगिनी बीके आशा दीदी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच मध्य प्रदेश असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भोपाल से चल के हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह जी, आपका भी इस सम्मेलन में, इस उद्घाटन सत्र में स्वागत है। साथ ही साथ अपनी इंस्पिरेशंस देने के लिए हमारी संस्था की एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्म कुमारी इस माउंट आबू राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी, हमारे वरिष्ठ भाई जी हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ हमारी संस्था की जोनल कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेशन विंग जयपुर से पधारी है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग के सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमार शैलेश भाई भी यहां पर उपस्थित है। और ये सब कार्यक्रम के पीछे जो हमारे प्रेरणा स्रोत आशा दीदी के साथ दिन रात सेवाएं करने वाले आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार हरीश भाई जी हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अभी हम मंचासीन सभी गणमान्यों का पुष्पों के द्वारा स्वागत करने की ये घड़ी है। मैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनों को निमंत्रित करती हूँ कि मुलुंद से आई हुई बहनें मंचासीन सभी वरिष्ठ मेहमानों का, आदरणीयों का स्वागत करें इस मंच में। आप सभी को पता है प्रशासन को सुशासन कैसे बनाएं, प्रशासन प्रगति की ओर कैसे चले, प्रशासन प्रभावशाली कैसे बने, इसमें मेडिटेशन का क्या योगदान है, ये योगदान के विषय में विचार करेंगे हम 2-3 दिन के इस सम्मेलन में, जिसमें आप सभी की उपस्थिति, आप सभी का सुझाव, पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर्स है श्रीमती ए धनलक्ष्मी जी, आईएएस, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपका भी मंच पर स्वागत है। मिस्टर विभूति रंजन चौधरी, आईएएस, स्पेशल सेक्रेटरी फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, पटना से, बिहार से पधारे हैं, आप दोनों का भी मंच पर मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगी। आप ताली बजा सकते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, अपने आप में खुशी भी होगी। ताली अपने लिए भी, ताली मेहमानों के लिए भी, ताली आज के त्रिवेणी संगम के शुभ दिन के लिए भी बजे, जिससे हमारा डायमंड हॉल गूंज उठे और पूरे भारतवर्ष नेपाल तक एक सुशासन को, प्रशासन को सुशासन बनाने की ये प्रक्रिया की संदेश पहुंच जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्र कर्मणि। अतिश्रेष्ठ प्रशासन के लिए भारतीय जीवन विधान संविधान भगवद गीता का ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। उसी को लेते हुए हम कर्म करें, कर्म से जीवन को श्रेष्ठ बनाए, कर्म से शासन को, प्रशासन को सुशासन बनाए। इन्हीं आशाओं के साथ हमारे बीच अपने मधुर उद्गार और स्वागत गीत लेके पधारे हैं हमारे इस मधुबन की शोभा मधुर वाणी ग्रुप। आप सभी को स्वागत गीत के द्वारा इस प्रांगण में, इस तपस्वी परिसर में आप सभी का स्वागत करेंगी मधुर वाणी ग्रुप फ्रॉम मधुबन।
ओम शांति। आज बहुत खुशी के पल हैं, आप सब एक साथ समवेत स्वर में बोलेंगे ओम शांति। फिर सजा है शांति वन, ये सुंदर संसार, प्रिय प्रशासक आप हैं आए, आपका स्वागत सौ सौ बार, आपका स्वागत सौ सौ बार। एक बार हर्ष ध्वनि करें, तालियां बजा करके अपना अभिनंदन कर लें। बहुत बहुत
सजा है शांति वन का ये सुंदर संसार, प्रिय प्रशासक आप आए स्वागत सौ सौ बार। फिर सजा है शांति वन का ये सुंदर संसार, प्रिय प्रशासक आप है आए स्वागत सौ सौ बार। राजयोग मेडिटेशन कुशल प्रशासन का आधार, राजयोग मेडिटेशन कुशल प्रशासन का आधार, वही योग सीखने है आए हमको हर्ष अपार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार, आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। प्रशासन प्रभावशाली योग की बड़ी जरूरत है, राजयोग के योग से ही सबकी बदलनी सूरत है। योग से आत्मनियंत्रण होता, एकाग्रता बढ़ जाती है, कर्म कुशलता के साथ में सदा सफलता लाती है। राजयोग के कर्म योग में है सबका उपचार, राजयोग के कर्म योग में आपका उपचार, वही योग सीखने है आए हमको हर्ष अपार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार, आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार।
Yeah।
यहाँ हवाओं में भी एक अनुशासन का एहसास है, सभी समस्याओं का हल राजयोग के पास है। स्वर्णिम युग की आहट मिलती सुनो सुनाई पड़ती है, जैसी होती अपनी अवस्था वैसी व्यवस्था बनती है। विश्व प्रशासक से पाए ये पावन उपहार, विश्व प्रशासक से है पाए ये पावन उपहार, वही योग सीखने है आए हमको हर्ष अपार, आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार, आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। दादियों दीदियों से सीखें दिलों पे शासन करती है, प्रेम नेम के संतुलन से कुशल प्रशासन करती है। विनम्रता जो व्यस्त रहते आप यहाँ पर आए हैं, अपना समझ कर आपने अपने कदम बढ़ाए हैं। शिव शक्ति बहनों ने बनाया विश्व एक परिवार, शिव शक्ति बहनों ने बनाया विश्व एक परिवार, वही योग सीखने है आए हमको हर्ष अपार, आपका स्वागत सौ सौ बार अभिनंदन बारंबार, आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। फिर सजा है शांति वन का ये सुंदर संसार, प्रिय प्रशासक आप है आए स्वागत सौ सौ बार। फिर सजा है शांति वन का ये सुंदर संसार, प्रिय प्रशासक आप है आए स्वागत सौ सौ बार। राजयोग मेडिटेशन कुशल प्रशासन का आधार, राजयोग मेडिटेशन कुशल प्रशासन का आधार, वही योग सीखने है आए हमको हर्ष अपार, आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार, आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार, आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार, आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार।
बहुत 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 धन्यवाद। ये सभी हमारे यज्ञ के समर्पित भाई अपने ही सुंदर शब्द, अपने ही संगीत, अपनी भावनाओं से आप सभी को इस धरती पर स्वागत किए हैं। जोरदार तालियों से इनके धन्यवाद हम करेंगे। अभी हमारे बीच आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई साहब पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ में हमारे बीच मिस्टर राजू भात्रा जी आए हैं डीआरएम अजमेर से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहनों से अनुरोध है उनका भी स्वागत करें। मिस्टर राजू भात्रा जी डिविजनल रेलवे मैनेजर अजमेर से पधारे हैं हमारे बीच में। अभी स्वागत की सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर से बहुत सुंदर नृत्य लेके आ रही है हमारी दो बहनें ब्रह्मा कुमारी पूजा, ब्रह्मा कुमारी प्रीति। दिन है सुंदर सा, एक फ्यूजन है नॉर्थ और साउथ, मना कथक और भरतनाट्यम का एक फ्यूजन डांस है जो आप सभी के स्वागत में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी का इस परमात्मा के घर में नृत्य के द्वारा स्वागत। Thank you.
सोच कर गुजर भर के खुशियां खुद में सारी दुनिया में भर दिल है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर भर के खुशियां खुद में सारी दुनिया में भर मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग बरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पर दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर खुशियों का घर दिल है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर दिल है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर सफल बना दे तू हसी सबकी जिंदगी का सफर दिल है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर भर के खुशियां खुद में सारी दुनिया में भर दिल है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर भर के खुशियां खुद में सारी दुनिया में भर आज कुछ कर गुजर
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से कुमारियों की हौसला बढ़ाई क्या। हम सभी एक विशिष्ट सम्मेलन में यहाँ उपस्थित है। इस सम्मेलन के आयोजन के पीछे की एक सूत्रधार कहे इंस्पिरेशन आशा दीदी के साथ हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार हरीश भाई जी जो हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग के माउंट आबू में रहते हैं। आप सभी का शब्दों से स्वागत भी करेंगे और इस विंग की कार्यविधियों के बारे में भी जानकारी देंगे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार हरीश भाई जी।
ओम शांति। प्यार से बोलिए ओम शांति। थैंक यू। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, निराकार ज्योति स्वरूप शिव पिता की अति प्यारी संतान, मंच पर विराजित हमारे सभी महानुभाव तथा सभा में उपस्थित प्रशासक वर्ग के अधिकारी भाइयों और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है, शिक्षक दिन भी है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ये जो राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन विंग के द्वारा एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिसका विषय भी बहुत अच्छा है, मेडिटेशन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात प्रभावशाली प्रशासन के लिए मेडिटेशन कैसे कार्य करता है। तो इस विषय को लेकर के आज एक बहुत अच्छा महासम्मेलन ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन परिसर में डायमंड हॉल में होने जा रहा है और आप सभी भाई बहने इतने दूर से पधारे, हम सबको भी बहुत खुशी हो रही है और हम दिल से आप सभी भाई बहनों का, मंच पर विराजित हमारे सभी महानुभावों का, महान आत्माओं का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमें बड़ी खुशी, आपको भी बड़ी खुशी है, लेकिन सबसे पहला स्वागत किसका करना चाहिए हमें? परमपिता परमात्मा का। तो परमात्मा का जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। वो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ है, उनकी ही सुप्रेरणाओं के आधार से ये हमारा सम्मेलन हो रहा है। उसके बाद हमारे मंच पर विराजित हमारी परम आदरणीय आशा दीदी जी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग की चेयरपर्सन भी है, आईटी विंग की चेयरपर्सन है, और खास जो गुड़गांव दिल्ली स्थित हमारा ओम शांति रिट्रीट सेंटर है उसकी आप डायरेक्टर भी है, कुशल प्रशासक है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर हम लोग स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे परम आदरणीय करुणा भाई जी बैठे हैं, जो एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है और साथ ही साथ चीफ ऑफ मल्टीमीडिया भी है। बहुत सालों से ये संस्था में जुड़े हुए हैं, समर्पित किया है, बहुत बड़ा कारोबार भी संभालते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाकर करुणा भाई जी का भी स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे आदरणीय दैवी भ्राता मृत्युंजय भाई जी, वो भी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है, एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन भी है, और संस्था के जितनी भी बड़े कॉन्फ्रेंसेज होती है, ग्लोबल समिट होता है, अन्य कार्यक्रम होते हैं, उनका बहुत ही सुंदर संचालन करते हैं, अच्छे प्रशासक है, उनके लिए भी हम लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मंच पर विराजित हमारे आदरणीय आईएएस ऑफिसर्स आए, खास बिहार से पधारे हमारे विभूति रंजन चौधरी जी, जो आईएएस है बिहार गवर्नमेंट में, उनके लिए भी हम दिल से ताली बजाकर स्वागत करें। और साथ में दिल्ली से पधारी है हमारी धन लक्ष्मी बहन, जिसका नाम ही धन लक्ष्मी बहन है, उनके लिए भी हम जोरदार ताली बजाए। और मध्य प्रदेश असेंबली विधानसभा में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में कार्य करने वाले हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह जी हैं, उनका भी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और साथ में बैठी हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी, जो कि वो सबजोन इंचार्ज राजस्थान में, जयपुर हमारा राजस्थान का मुख्य स्थान है, मुख्य कैपिटल सिटी है, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग की वो जोनल कोऑर्डिनेटर भी है, उनके लिए भी हम ताली बजा करके स्वागत भी करेंगे। और हमारे खुशी की बात है कि अजमेर से खास डीआरएम सर आए हैं, आदरणीय भ्राता राजू बुस्तर जी, उनके लिए भी हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और हमारे ब्रह्मा कुमार शैलेश भाई, काफी सालों से एडमिनिस्ट्रेशन विंग में सेक्रेटरी के रूप में, ट्रेजरर के रूप में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और मंचासन ये जो कुशल संचालन कर रही है हमारी आदरणीय वीणा दीदी, जिसका नाम ही वीणा है, वीणा मना ज्ञान की वीणा, और बहुत अच्छा संचालन भी कर रही है, और आगे दो दिन में उनके द्वारा हम लोग बहुत कुछ अच्छी ज्ञान की बातें भी सुनेंगे, उनका भी हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और आप सभी जो भारत के विभिन्न स्थानों से पधारे, दूर दूर से आए हैं, और विशेषकर हमारे नेपाल से भी एक बहुत अच्छा डेलीगेशन आया है, और इतनी चारों तरफ थोड़ी बहुत समस्याएं भी है, लेकिन हिम्मत से इतने दूर से यहाँ तक पहुँचना ये भी एक भाग्य की बात है। मैं तो कहता हूँ आप सबको मैं मुबारक देना चाहूँगा कि आप सभी भाग्यवान आत्माएं हैं कि इतनी कठिन समस्याओं को पार करके आप यहाँ परमात्मा के घर पधारे हैं। आप सभी अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ आप सबको लाने वाले जो हमारे विशेष ब्रह्मा कुमार भाई है, बहने हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत किया और आप सबको यहाँ तक पहुँचाया, तो उनके लिए भी हमें एक ताली बजानी चाहिए। और इस एडमिनिस्ट्रेशन विंग की कॉन्फ्रेंस को सफल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन विंग की हमारी सीनियर बहनें भी आई है, भाई भी आए हैं और कई सेवादारी भाई बहने भी आए हैं इस सम्मेलन को सफल करने के लिए। उनके लिए भी हम जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस विंग है, उसका जो मुख्य लक्ष्य है या उद्देश्य है, वो यही है कि जो कहाँ भी भारत के या अन्य देशों में भी जो प्रशासक वर्ग है, अधिकारी है, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान पर बैठ करके सरकार के द्वारा आयोजित जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य करते हैं। तो सरकार और जनता के बीच ये प्रशासक अधिकारी गण एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। एक तरफ सरकार का प्रेशर होता है और दूसरी तरफ जनता की भी कुछ आशाएं आकांक्षाएं होती है। तो उस समय थोड़ा सा माइंड के अंदर कभी प्रेशर, कभी तनाव, कभी टेंशन का अनुभव होता है। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन विंग का ये लक्ष्य है कि जो हमारे प्रशासक वर्ग के अधिकारी भाई बहने हैं, उनको भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी जाती है, और ये राजयोग की शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान का थोड़ा सा भी व्यक्ति सुनता है या जीवन में धारण करने का प्रयास करता है या योग का अभ्यास करता है, तो ये हमारा अनुभव है कि कई ऐसे हमारे प्रशासक अधिकारी गण जो यहाँ भी बैठे और भी भारत में अन्य स्थानों पर है, वो अपना प्रशासन का कार्य कुशलतापूर्वक करते हुए सफल प्रशासक के रूप में अपने टेंशन फ्री होकर के अपना कार्य करते हैं। उसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे बीच में जो भोपाल से पधारे हैं हमारे डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह जी, जो विधानसभा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कई बार उनके सामने भी कई कठिन समस्याएं आ जाती है, लेकिन वो थोड़ा योग का अभ्यास करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो वो कैसे उस कठिन परिस्थितियों को भी सहजतापूर्वक खुशी खुशी से वो पार कर लेते हैं। तो वो भी अपना थोड़ा अनुभव आप सबको सुनाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो ज्ञान और योग भगवान ने हम सबको 24 घंटा दिया है, लेकिन अगर आधा घंटा, एक घंटा भी अगर हम ये ज्ञान योग का लाभ लेते हैं, उसको जीवन में धारण करने का अभ्यास करते, तो उसके आपके जीवन में बहुत सारी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है और खुशी खुशी से हम अपना प्रशासन का कार्य कर सकते हैं। तो इसी लक्ष्य को लेकर के ये विंग जो है, माउंट आबू हमारा हेडक्वार्टर है यहाँ भी, और भारत के विभिन्न स्टेट्स के अंदर, नेपाल आदि स्थानों में भी हम लोग अनेक प्रकार के कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, ट्रेनिंग है ना, तो इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में भी करते रहते हैं, साथ में कॉरपोरेट सेक्टर्स है, वहां भी जाकर के हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी लक्ष्य को लेकर के आज भी ये एक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और आज का ये जो विषय है हमारा, मेडिटेशन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इस विषय पर भी इस संस्था के प्रबुद्ध जो स्पीकर्स है, तो उनके द्वारा भी हम लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलेगी। तो आप सबसे हमारा एक नम्र निवेदन रहता है कि जो भी टाइम आपको ये प्रोग्राम बुकलेट आपको मिला होगा, सवेरे से लेकर के शाम तक का जो भी टाइम टेबल है, उसी हिसाब से आप लोग टाइम पर पहुंचेंगे और पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, क्योंकि आज उद्घाटन है, कल और परसों दो दिन पूरा दिन कॉन्फ्रेंस चलेगी, और फिर 8 तारीख को आपका साइटसीन का भी कार्यक्रम है। तो उस हिसाब से दो दिन के लिए आप लोग एकाग्रता से, शांति से टाइम पर आकर के ये लाभ उठाएंगे, तो मुझे न केवल विश्वास, पूरा विश्वास है कि आप लोग यहाँ से कुछ ऐसा ज्ञान का खजाना और मेडिटेशन करने की कला सीख के जाएंगे, जिसके आधार से आप आगे के जीवन के अंदर भी आपको ये बहुत काम में आएगा। और मैं चाहूंगा कि हर साल हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन विंग की कॉन्फ्रेंस करते, इस बार भी आप पधारे, लेकिन साल में एक बार जब भी कॉन्फ्रेंस हो तब भी आप यहाँ पधारे और ये लाभ लेते रहे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, यही मेरी शुभ भावना शुभकामना है। फिर से आप सभी भाई बहनों का, हमारे मंच पर विराजित हमारे सभी महानुभावों का दिल से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश भाई जी का, आपने प्यार भरे शब्दों से, दिल के उद्गारों से, आत्मस्मृति के तिलक से, गुणों के गुलदस्ते से बाहें फैलाकर आप सभी का स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करेंगे ज्योति प्रज्वलित करते हुए। तो ज्योति प्रज्वलन की थोड़ी सी मैं विधि बता देती हूँ। बीच में मंचासीन सभी गणमान्य ज्योति प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और मेरे लेफ्ट साइड में मैं कुछ आमंत्रित डिग्निटरीज का अनाउंसमेंट करूंगी, वो आएंगे, और इस तरफ से हमारे विंग के सीनियर बहनें और भाई है वो आएंगे। इस विधि से इस कार्यक्रम के शुभारंभ ज्योति जगाकर हम सभी करेंगे। तो पहले मैं अनाउंस करूंगी आदरणीय मेहमानों का। ऑनरेबल जस्टिस मुकेश राज पुरोहित जी, जज राजस्थान हाई कोर्ट, मिस्टर रामदीप साह फॉर्मर जीजी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सीवरेज मैनेजमेंट काठमांडू, मिस्टर संजीव कुमार जनरल मैनेजर सिंगरौली, मिस्टर अनिल कुमार जी चीफ मैनेजर सिंगरौली, मिस्टर पुनीत कुमार डीजीएम सिंगरौली, मिस्टर अनिमेश बैनर्जी जी प्रेसिडेंट आबू रोड मॉडर्न इंसुलेटर्स फैक्ट्री से, मिस्टर प्रशांत गोयल जी आईएएस फाइनेंशियल कमिश्नर दिल्ली से, ब्रदर सीताराम मीना जी मोदी नगर से रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है आप, डॉक्टर ललित वर्मा जी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी, और मिस्टर ज्ञानचंद जैन जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और मेरे दाएं तरफ आएंगे ब्रह्मा कुमारी विधात्री बहन दिल्ली ओआरसी से, ब्रह्मा कुमारी ख्याति बहन दिल्ली ओआरसी से, ब्रह्मा कुमार भारत त्रिवेदी जी वलसाड से, ब्रह्मा कुमारी राधा बहन लखनऊ से, ब्रह्मा कुमारी सुगंधा बहन हिंदूपुर से, ब्रह्मा कुमारी सरला बहन मुलुंड से, ब्रह्मा कुमारी शैलजा बहन छतरपुर से, ब्रह्मा कुमारी बिंदु बहन सिरसा से, ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन दिल्ली लॉरेंस रोड से, ब्रह्मा कुमार संजय भाई पाटना से, ब्रह्मा कुमार भरत भूषण भाई पानीपत से। विनोद कुमार सिंह जी आप भी कृपया स्टेज पर पधारें।
दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम
बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आदरणीय बहनों का और मंचासीन सभी गणमान्यों का आप सभी ने भी इस उद्घाटन के कार्य में अपने दिल से मन से भाग लिया ऐसे महसूस करते हुए हमारे बीच अजमेर से डिविजनल रेलवे मैनेजर मिस्टर राजू भाई जी आए हैं उनको थोड़ा जल्दी जाना है इसलिए मैं पहले उनसे निवेदन करती हूँ भाई सब अपने दिल के उद्गार या शुभकामनाएं हमारे बीच में रखे आदरणीय मिस्टर राजू जी डीआरएम अजमेर
मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशासक वर्ग के सदस्य उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों आज इस आध्यात्मिक स्थल पर आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ परंतु इस जो एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है ये प्रशासक वर्ग का महासम्मेलन है और प्रशासक होने के नाते मैं इस सम्मेलन का भागीदार होने के लिए मैं काफी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं यहां जो चार पांच दिन का कार्यक्रम रहेगा उसमें प्रशासक वर्ग जिन चुनौतियों का सामना करता है मानसिक तनाव भी होता है कई तरह के चैलेंजेस आते हैं उनका किस तरह से सहज भाव से शांत मन से उनका सामना करना उचित निर्णय लेना ये बहुत आवश्यक होता है और ऐसे में जो यहाँ मेडिटेशन की हमें जानकारी दी जाएगी और जो हमें सिखाया जाता है राजयोग मेडिटेशन वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है उचित निर्णय लेने में कठिन निर्णय लेने में चैलेंजेस को हैंडल करने में तो मैं सभी यहाँ उपस्थित अतिथियों सहभागियों को इस सम्मेलन में आने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से हम सभी लोग कुछ न कुछ अवश्य ग्रहण करके जाएंगे ये सम्मेलन सभी के लिए उपयोगी रहेगा और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभारी हूँ कि मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया कुछ आवश्यक कार्य से मुझे जल्दी निकलना पड़ रहा है पर मैं पुनः चाहूँगा कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ पे जो अमूल्य शिक्षा दी जाती है उसे ग्रहण करूँ और उसे जीवन में धारण करूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि पुनः मैं इस आध्यात्मिक स्थल पर एक बार आऊं और आप सब लोगों के बीच में मुझे यहां पर भागीदारी का एक मौका और मिले। पुनः आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए और आप सब लोगों से मुखातिब होने के लिए, मुखातिब करने के लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का। ये आपका घर है, बार बार आते रहिएगा, ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा। आप हर बार यहाँ सुस्वागत करते हैं हम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है, मेडिटेशन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, किस लक्ष्य से, किस सोच से ये आयोजित किया गया है, इसके बारे में अपने अनुभवी श्रेष्ठ विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी। जैसे पहले भी सुना, आप एक अच्छे वक्ता ही नहीं, कुशल प्रशासक है और राजयोगी जीवन करीबन, मैं समझती हूँ करीबन 65 इयर्स से आप समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारी होकर, आप डबल ग्रेजुएट होते हुए अपने आप को समर्पित करके संस्था में एक उदाहरण पेश किए हैं और संस्था में समर्पित जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं उनके लिए आप एक आदर्श है, उदाहरण है, प्रेरणा स्रोत है और उनकी मार्गदर्शिका है। और आदरणीय आशा दीदी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग की चेयरपर्सन है, आईटी विंग की भी चेयरपर्सन है और ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम के आप डायरेक्टर भी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी आज के विषय पर प्रकाश डाले आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी।
शांति, ओम शांति। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध वक्तावृंद, हमारे माननीय अतिथि और सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, जब ये विषय चुना गया तो वो अनुभव को ध्यान पर रख कर के हमने ये थीम रखी और उसके लिए एक मॉडल, एक एग्जाम्पल, वो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सामने आया। 1937 से आज दिन तक वो चीज जो एक स्क्रैच से शुरू हुई, आज इतना विस्तार सारे विश्व में, एक बहुत ही अद्भुत प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलंटरी है, जो स्पिरिचुअल है, उसकी विविधता अनुपम है। कोई लॉ का बंधन नहीं है, लॉ एक स्टिक की तरह यूज नहीं किया जा रहा है, परंतु इतने देश, इतने विभिन्न कल्चर्स, संस्कृतियां, इतनी विभिन्न लैंग्वेजेस, इतने विभिन्न बैकग्राउंड के लोग एजुकेटेड भी हैं, अनएजुकेटेड भी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बैकग्राउंड्स, उनको आप जितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप कर सकते हैं, सब प्रकार का सैंपल आपको यहां मिलेगा। परंतु उन सबके बावजूद एक मुष्ट होकर के ऑर्गेनाइजेशन का चलना, और वह भी मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, और उसकी एक और विशेषता कि कोई सोचे कि बहुत एजुकेटेड मास्टर्स डिग्री कहां कहां से, अमेरिका से, फला जगह से कोई डिग्रीज लिए हुए होंगे, नहीं, बहुत सिंपल मानवता और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ने वाले, और उसमें भी मात्र शक्ति महिलाएं जो फोर फ्रंट में हैं, लीडरशिप रोल में हैं, एजुकेटर के रोल में हैं, जिन्हें समाज ने उस समय रिजेक्ट किया था। परमात्मा ने कहा मैं अपना कार्य रिजेक्टेड माल से ही करूंगा, और इन रिजेक्टेड माल को आज एक विशेष स्थान देकर इस स्तर पर लाए। सारे संसार में गर्व से हमें आनंद आता है कि यह अपने प्रकार की एक ही संस्था है जो इतनी बड़ी संस्था, और उसका प्रशासन तीन बातों के आधार पर है। इसके प्रशासन में तीन चीजें, तीन आयाम है, मैं कहूं डिमेंशंस है। ये हमारी फैमिली भी है, ये हमारी इंस्टीट्यूशन भी है, और ये हमारी यूनिवर्सिटी भी है। और तीनों में मात्र शक्ति का योगदान है। जब मैं मात्र शक्ति कहती हूं, मात्र शक्ति से अभिप्राय, प्यारे भाई और बहनों, माताओं बहनों से नहीं है, केवल महिलाओं को ही स्थान दिया जाए वो उस बात से नहीं है, परंतु माताओं और बहनों में जो गुण और विशेषताएं हैं प्रशासन में, उनका उपयोग परमात्मा पिता करते हैं, जो सर्व उत्तम प्रशासक है। वो गुण कौन से हैं आप सब जानते हैं। प्रशासन में इन सब की आवश्यकता है। आप सब जानते हैं प्रशासकों का रोल क्या है। आपको अपना कार्य वेल प्लान्ड रीति से करना होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रीति से करना होता है, मेथोडिकली करना होता है, सिस्टमैटिकली करना होता है, एफिशिएंटली करना होता है, इफेक्टिव भी होना चाहिए, लॉफुल भी होना चाहिए, स्मूथ भी होना चाहिए, ह्यूमेन भी होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, और सोशली बेनिफिशियल भी हो। सबसे बड़ी बात वो पर्सनली सेटिस्फाइंग मैनर भी हो, राइट? एग्री? दूसरी बात, आपको डील किससे करना पड़ता है? आपको ध्यान रखना है कि निरंतर डेवलपमेंट हो, आपको जो क्षेत्र दिया गया यदि डेवलपमेंट नहीं की तो ना आपको संतोष ना ही प्रशासन को संतोष ना ही लोगों को संतोष। डेवलपमेंट भी चाहिए, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग भी चाहिए, डिस्टर्बेंसेस और डिसिप्लिन मेंटेन करना है, डिस्टर्बेंसेस को खत्म और डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये भी आपका कार्य है। और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हर वक्त इमरजेंसीज को, क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल कर सके अप्रोप्रिएटली, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड एस्पिरेशंस ऑफ अदर्स। आपसे धैर्यता, टॉलरेंस, एंड्योरेंस एक्सपेक्ट की जाती है, आपसे ह्यूमिलिटी एक्सपेक्ट की जाती है, आपसे कंपैशनेट और ह्यूमेन एटीट्यूड भी एक्सपेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ आपके अंदर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी भी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, प्यार और गुडविल चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए, यूनिटी एंड कोऑपरेशन, आप सब चीज जो है प्रॉपरली अपने लोगों को टीम में ले सके, ये सब एबिलिटी भी आपके अंदर चाहिए। एंड देन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक्सलेंस को अचीव करें। इन सब चीजों के लिए जो कम नहीं है, एक साधारण आत्मा इतने सब गुणों से भरपूर हो, उसके लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल कहीं पर भी खुला हुआ नहीं है। आपसे कितनी ही अकादमीज हैं जहां आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, हर स्टेट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमी है, हर स्टेट में, इंडिया लेवल पर भी है। क्या आपको वहां सिखाया जाता है हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी लवफुल? कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है प्यारे भाई और बहनों। ट्रेनिंग स्कूल अगर वो है तो आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं। हम अपना सर्वस्व जीवन प्रशासन को दे देते हैं, समाज को देते हैं, सेवाओं को देते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि मुझे भी किसी चीज की आवश्यकता है? हमारे यहां जो बेसिक चीज हम सब बहन भाइयों को सिखाई जाती है वो ये, स्वराज अधिकारी, स्वशासन। जो स्व पर शासन करना जानता है, स्व पर शासन अर्थात अपने गुणों, शक्तियों, विशेषताओं, योग्यताओं, उनका उपयोग कैसे, कहां, किस रूप से करना है, ये प्यारे भाइयों और बहनों कला है, एक स्किल है जो कहीं पर भी आपको नहीं सीखने को मिलेगी। हां, एक पक्ष है जिसको हमने खोया हुआ था, प्रायः हमारे प्रशासक भाई बहने क्या कहते हैं, मेरा ये भाग्य रहा है दिल्ली राजधानी में भरपूर रीति से गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट है, पार्लियामेंट है, सेवा करने का भरपूर अवसर मिला है, हमारी बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स सेक्रेटरीज क्या कहते थे, दीदी मेरे लिए वर्क इज वर्शिप, ये उनके शब्द होते थे। कभी कभी हम जोवियल मैनर में उनसे बोलते थे, सर टेल मी फ्रैंकली, दिल पे हाथ रख करके सच्चाई से बताइएगा, इज योर वर्क रियली अ वर्शिप और हैज इट बिकम ए वॉरशिप? वर्शिप एंड वॉरशिप, वॉरशिप आप समझते हैं। मुस्कुरा पड़ते थे। तब वहां पर ये डिमेंशन जो मेडिटेशन का है, नहीं तो प्रायः क्या कहते हैं, बहन जी ये सब चीजें हमने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव के लिए रखी हैं। प्यारे भाई और बहनों, आखिरी पड़ाव का किसी को कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आनंद तब है जब आप सारी जिंदगी जी चुके, अब कुछ जिम्मेवारी नहीं है, कुछ करने को नहीं है, क्या करेंगे, राम नाम ही तो भजेंगे। परंतु आनंद उसमें है जब आपके सामने चैलेंजेस हैं, आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, और आप उनको फेस करके विक्टोरियस इमर्ज होते हैं, आनंद उसमें है। और जब आप उसमें विक्टोरियस इमर्ज होते हैं, वो आपके जीवन का अनुभव बनता है। मेडिटेशन में जिसकी विस्तृत व्याख्या आपको कॉन्फ्रेंस के दौरान मिलेगी, मेडिटेशन में तीन चीजें हम अपनी ठीक करते हैं। पहला, हम अपना संबंध अपने आप से सेट करते हैं। मैं कौन? मैं प्रशासक रूप से जन्मी नहीं थी, ये मैंने पढ़ाई से टाइटल लिया है। मैं कौन, कभी सोचा? ये सब डिग्रीज, सब स्टेटस, पोजीशन समाज से ली है, समाज ने दी है, आप कौन हैं? जब ये रियलाइजेशन होती है, अपनी आइडेंटिटी हम पक्की करते हैं, समझ में आता है, तब स्वशासन आरंभ होता है। आपका संबंध पहले ठीक तो हो, क्या हाल है हमारा? एक मिसाल, बहुत कोई बात आ जाती है जिसको डील करना है, दिमाग में वही चीज घूमती रहती है, घूमती रहती है, और हम क्या कहते हैं, मैं ये सोचना नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कर नहीं पा रही। आपका मन, आपका मन, आपकी बुद्धि आपके ही नियंत्रण में नहीं है। मेडिटेशन के द्वारा वो कला हम सीख पाते हैं। दूसरी बात, मेडिटेशन के द्वारा हमारा संबंध पारस्परिक, बुरा ना मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, वास्तविकता है। हम अपने सिर पर बड़ा बड़ा ईगो लेकर के घूमते हैं, और उस ईगो के कारण अपनों से दूर रहते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं, संबंध नहीं, दूरियां, जहां कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। तीन मिनट के लिए हम लोग अपने आप को साइलेंस में ले चलते हैं। जब मन और बुद्धि क्लीन होती है, क्लैरिटी बढ़ती है, नेगेटिविटी से मुक्त होते हैं, आपकी डिसीशन मेकिंग पावर बढ़िया बनती है, उसके साथ साथ आपके अंदर, सबके अंदर परमात्मा ने बहुत सुंदर चीजें दी हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंट्यूशन ये कार्य करती है। प्रशासक को ये चाहिए। और ये जो ट्रैफिक कंट्रोल अभी हमने किया, ये प्रशासकों के लिए एक बहुत ही अच्छी विधि है थोड़ा समय स्वयं को अपने कार्य से मुक्त कर लीजिए। 3 मिनट, 2 मिनट डीप साइलेंस में चले जाएं, आपकी इंट्यूशन काम करेगी। कभी कभी ऐसी समस्या जिसका सलूशन सूझ नहीं रहा होता, अचानक फ्लैश करती है, ये हमारे अनुभव हैं। मेडिटेशन बैठ करके कोई करने की चीज नहीं है, मेडिटेशन को अपनी लाइफ में, अपने वर्क में हमको इंटीग्रेट करना है, उसको समाना है। मैं बता रही थी, आपका संबंध आपके साथियों से अच्छा होता है, आप उनके गुणों को, विशेषताओं को यूज करना सीख लेते हैं। आज हर एक में हर कोई गुण नहीं होता, पांचों उंगलियां अलग हैं और पांचों की अपनी स्पेशलिटी है। हमारी टीम में भी, हमारे ऑफिसर्स में, हमारे साथियों में भिन्न भिन्न स्पेशलिटीज हैं, उनका उपयोग कर सकना ये प्रशासक की कला होती है। और तब होगा जब आपके अंदर अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होगी और आप दूसरे को भी रिस्पेक्ट की निगाह से देखेंगे। हमारे यहां कहा जाता है, गुण चोर बनो, गुणों को लो। मेडिटेशन से ये चीज हम सीखते हैं। तीसरी बात, मेडिटेशन के द्वारा हमारा अपने कार्य से संबंध अच्छा बनता है, अपने कार्य क्षेत्र से संबंध अच्छा बनता है। प्रायः ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव हैंगओवर या कभी कभी वर्कहॉलिक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, वर्क वर्क एंड वर्क, लेकिन मेडिटेशन आपको एक नया दृष्टिकोण देगा। जो अपने देश की संस्कृति रही है, कर्म योगी जीवन, भारत सरकार ने भी आजकल कर्म योगी की थीम ली हुई है प्रशासकों के लिए स्पेशली, जिसमें कर्म और योग दोनों का बैलेंस हो। अगर एक पलड़ा ज्यादा होगा तो गड़बड़ होगी, दोनों का बैलेंस रख सकें। निमित्त भाव, जिसको हम कहते हैं ट्रस्टीशिप, आजकल जिसको लोग मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, अपने कार्य के लिए, कार्य क्षेत्र में ये जो एटीट्यूड हमारा डेवलप होता है, डिटैच्ड इन्वॉल्व, करना भी सब कुछ है, नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन डिटैच होके करना है, डिटैच भी रहे इन्वॉल्व भी रहे, ये भी एक कला है, बैलेंस है, जो मेडिटेशन से हम सीख पाते हैं। मेडिटेशन अनुभव कहता है, संस्कार परिवर्तन करता है। मैं एक मिसाल देके समाप्त करूंगी। अपने देश के बहुत साल पहले, 60s की बात है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एलिस माथुर होते थे और वे अपनी स्टोरी लंबी है शॉर्ट करते हुए, उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया। जब 3-4 दिन बीत गए, बहुत हार्ड टास्क मास्टर थे, जैसे कोई ऑफिसर्स होते हैं बहुत हार्ड, बहुत लॉफुल, बहुत सख्त, उस प्रकार के ऑफिसर थे। 3-4 दिन के बाद ऑफिस में चर्चा शुरू हुई, डॉक्टर एल एस माथुर को क्या हो गया है, बिल्कुल चुप रहते हैं, शांत हो गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन किसी ऑफिसर में ताकत नहीं थी कि उनके पास जाए और पूछे तो सही। 3-4 ऑफिसर्स ने हिम्मत की, मिल करके गए और पूछा, सर सब कुछ ठीक है? हाँ जी सब कुछ ठीक है। सर घर में सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप लोग मेरे से प्रश्न क्यों कर रहे हो? कहा सर आप कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं, आप वैसे नहीं है जैसे चार दिन पहले थे, कुछ बदल गए हैं, चुप चुप रहते हैं। अब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है। ये था डॉक्टर एलिस माथुर का। उनकी लोकप्रियता बढ़ी, ईश्वरीय ज्ञान के वो पिपासु थे। जिस दिन से उनको परिचय मिला उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक एक दिन भी जो हमारा क्लास होता है मिस नहीं किया, बहुत सुखद जीवन जिया। आज भी उनके बंगलों में ब्रह्मा कुमारी सेंटर चल रहा है। ऐसी यात्रा प्यारे भाइयों बहनों, ये स्वाद है, मेडिटेशन एक स्वाद है। जिस स्वाद को लेने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है, जो अनुभव हमने पाया वो हम चाहते हैं आप भी शेयर करें, और उससे आप जीवन भर के लिए लाभान्वित हो। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।
बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय मिची आशा दीदी जी ने बहुत सुंदर तरीके से मेडिटेशन से प्रशासन को सुशासन, स्वशासन और कुशल प्रशासन कैसे बना सकते हैं उसके बारे में प्रकाश डाला। जोरदार तालियों से हम उनका अभिवादन करेंगे। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी, आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है ब्रह्मा कुमारी इसके। इस परिसर में आपको सभी अन्नाजी के नाम से जानते हैं। आप संस्था के बहुत एक्टिव सदस्य हैं और संस्था की बहुत सारी गतिविधियों को आप संभालते हैं। बहुत लंबे समय का आपका राजयोगी जीवन और सेवा जीवन है। आप अपने अनुभव के आधार से हम सभी को इंस्पायर करें। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी, सॉरी हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी पधार चुके हैं। आप हमारी संस्था के एडिशनल चीफ हैं। आप पिछले 7 दशकों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं समर्पित रूप से। खासकर आप विदेशों की सेवाएं संभालते हैं और अभी हमारी संस्था के आप एडिशनल चीफ हैं। आपका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस में।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में और डायमंड हॉल में प्रशासन वर्ग का जो सम्मेलन हो रहा है, इसके लिए प्रशासन वर्ग की हमारा प्रिय बहने आशा बहन, हरीश भाई और उनके वीना बहन और अंत्या पूनम बहन, इनकी साथ ही सभी भाई बहनों को मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि भारत की कोने कोने से इतनी तादाद की एडमिनिस्ट्रेटर्स व प्रशासक वर्ग की भाई बहनों को बुलाया, इसके लिए भाई साहब आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ऐसी संदर्भ में ऐसी कार्यक्रम में शामिल होकर के हम सबको ज्ञान की एक प्रकाश डालने के लिए हमारा आदरणीय जयंती दीदी आए, उसको जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें, सम्मान करें। और साथ साथ में इसी कॉन्फ्रेंस में अवधेश प्रताप सिंह जी जो हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, बहुत दिन से इस संस्था से जुड़े हुए हमारा खास मित्र है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और साथ साथ में श्रीमती ये धनलक्ष्मी बहन, हम सबको लक्ष्मी बांटेंगे, जान लक्ष्मी आईएएस ऑफिसर है, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और रंजन चौधरी साहब IAS, स्पेशल सेक्रेटरी फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन है, पटना से, बिहार से, काश बिहार से आए हैं भाई साहब, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ बधाई देता हूँ, क्योंकि आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए। और हमारा शैलेश भाई, हमारा वीना बहन और अन्य सभी भाई बहनों को, समस्त भारत और नेपाल से आई हुई आप सबको, प्रभु प्रेमियों को, शांति प्रिय आत्माओं को और ज्ञान प्रिय आत्माओं को और ईश्वरी सेवा प्रिय आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज स्पेशल डे है, एक तो ईद का दिन भी है, ओनम का भी दिन है, टीचर्स डे भी है, क्योंकि राधा कृष्ण का बर्थडे तो टीचर्स डे के 3-in-1 है। इसके लिए बाबा को भी हम लोग कहते हैं परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता कहते हैं, और भी बहुत संबंध है, परंतु ये विशेष परम शिक्षक भी है, क्योंकि वो शिक्षा देता है। कौन सा शिक्षा? जिस शिक्षा से मनुष्य आत्माएं देवात्मा बन सकते हैं, फरिश्तात्मा बन सकते हैं, प्रशासक बन सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, प्रभु प्रेमी बन सकते हैं, लोक प्रेमी बन सकते हैं, ऐसी शिक्षा जो देते हैं उसकी असीम कृपा इस समय में इस धरती पर हम सबको उपलब्ध है। साथ साथ में वो वर्षा देते हैं, अधिकार देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, शक्ति देते हैं, दैवी गुणों को देते हैं, इसके लिए वो उसको परम पिता भी कहते हैं। ऐसे परम पिता के घर में आप सब आए हैं, हम बारंबार आने के लिए भी निमंत्रण देते हैं। और साथ साथ में वो परम सद्गुरु भी है, क्योंकि आज के दुनिया का देखते हैं तो मनुष्य स्ट्रेस है, बहुत प्रकार की परेशानी है, सफरिंग, सारोस, डिसीजेस, मिजरीज, मिस्चीवस, ये सब इतनी भंडारा हर व्यक्ति इकट्ठा करके अपने दिमाग में रखा है। समाज में तो यही है, युद्ध भूमि, महाभारत के युद्ध भूमि पहले हो गया था, परंतु वो युद्ध भूमि भूल गया, हर एक मस्तिष्क को युद्ध स्थल बना दिया, प्रेम स्थल बनाना था, ज्ञान स्थल बनाना था, सत्य स्थल बनाना था, शांति स्थल बनाना था, अभी जो बना दिया युद्ध स्थल। युद्ध स्थल में क्या होता है? अधिकांश संशयात्मक दृष्टि होता है, भय की दृष्टि होता है, चिंता की दृष्टि होता है, अनेक प्रकार की कुदृष्टि होता है, इसके लिए मनुष्य के अनेक प्रकार के नेगेटिविटी भरपूर होकर के मन को विचलित किया। इसके लिए प्रशासन वर्ग वाले के सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, तो इसके लिए ज्ञान का, हमारा दादी जानकी दादी सदैव कहते थे, इंस्पायर, शेयर, केयर, इंस्पायर एंड एनलाइट। एनलाइटनमेंट का विधि क्या है? एनलाइटनमेंट किस चीज से होता है? हम लोगों ने अभी तो बहुत अच्छी उद्घाटन किया, हर एक बोलते दीप से दीप प्रज्वलन करो, आपको परमात्मा को याद करो, हनुमान को याद करेंगे, राम को याद करेंगे, कृष्ण को याद करेंगे। दीप से दीप प्रज्वलन करने के लिए क्या कहेंगे? मोमबत्ती से दीप जला देते हैं, ये हमारा गलती है, दीप से दीप प्रज्वलन होना चाहिए। ये परंपरा हम भूल जाते हैं, मोमबत्ती से मोमबत्ती को जला करके हम दीप प्रज्वलन करते हैं। ऐसे ही लोग तो अनेक प्रकार का योग सिखा देते हैं, वो योग भी नहीं है, वियोगी बना देते हैं। ऐसी अनेक गलतियां हम लोग करते आए हैं, गलती के पुतले मनुष्य बन चुका है। अभी प्रशासन वालों के अंदर क्लीन एंड क्लियर, प्योर एंड पीसफुल एंड ब्लिसफुल जीवन जीने के लिए ज्ञान की दीपक जलाना चाहिए, मन में ज्ञान की शक्ति बनना चाहिए। मेरे को एक संदर्भ याद आ रहे हैं, हमारे आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के टाइम में लगभग 25 से ज्यादा वाइस चांसलर संगठित हुए थे इधर। उस समय में एक वाइस चांसलर, उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी भर पर मैनेजमेंट ने पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, परंतु हमारा दादी इन सभी मैनेजमेंट पढ़ा ही नहीं है, अभी 140 देशों में सेंटर खोल दिया, इनको मैनेजमेंट कर रहे हैं, करीब हजारों बहनों का समर्पित करके। इन्होंने प्रश्न पूछा, सर आप कितने यूनिवर्सिटी खोला? और जो मैं एक ही यूनिवर्सिटी में बड़ा हूँ, उधर ही रहता हूँ। मैंने कहने की भाव ये है, एडमिनिस्ट्रेशन सुख शांति का समृद्ध विकसित करने के लिए उनके अंदर बहुत अवकाश मिला हुआ, परंतु इसके लिए सबसे बड़ा पूंजी उनके अंदर क्या होना चाहिए, ज्ञान की पूंजी होना चाहिए. नॉट ओनली द बुकिश पूंजी, रियलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, मॉरल कोशेंट होना चाहिए, प्लस उनके अंदर चरित्र का पूंजी होना चाहिए. यदि चरित्रवान है तो चित्र उनका ठीक रहेगा, विश्व नया विश्व बनेगा. सेल्फ कंट्रोलर कैन बिकम ए वर्ल्ड कंट्रोलर, सेल्फ ऑर्गेनाइजर कैन बिकम ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजर, सेल्फ रूलर कैन बिकम ए वर्ल्ड रूलर. ऐसे वर्ल्ड रूलर बन सकते हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर सभी एक एक बन सकते हैं, एक एक महिला बन सकते, एक बहन बन सकते, एक भाई बन सकते, एक टीचर बन सकते. हम सब ऐसी बनने वाले होगा तो भारत क्या विश्व नया विश्व बनेगा, नई सृजन होगा, नया आयाम होगा, नया प्रॉस्पेरिटी होगा, नए सुख शांति की समृद्धि के स्वराज होगा. ऐसे स्वराज अधिकारी बनने के लिए ये शिक्षा है, ये योग है. ऐसी योग जो सीखेगा उनका मन सदा प्रसन्न रहेगा. मैंने मेरे जीवन में हमारा दादी प्रकाशमणि जी को अन्य दादियों को देखा, उन्होंने जिंदगी में कभी क्रोध देखा नहीं उनके चेहरे पर, कभी टेंशन मैंने नहीं देखा उनके जीवन पर, कभी भय उनके सामने कई चैलेंजेस आया मैंने कभी वो भयग्रस्त होकर के, कंफ्यूज होकर के, कॉन्फ्लिक्ट होकर के दूसरों के ऊपर जोर से बोलते हुए मैंने नहीं देखा. ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार करने की, यदि विद्यालय है, देवालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय में आप सभी आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, ओम शांति, नमस्ते.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का. अपने शक्तिशाली ओजस्वी वाणी से अपने स्वराज्य अधिकारी बने तभी हम सुशासन प्रशासन कर सकते हैं, स्वशासन भी कर सकते हैं. इसके लिए आप सभी को इंस्पायर किया और हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो एक व्यवस्थित सुशासन सिखाया जाता है उसकी भी आपने हम सभी को शब्दों के माध्यम से दर्शाया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह भाई जी, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश असेंबली भोपाल से पधारे हैं. आप भोपाल के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी ऐसी गतिविधियों को करते हुए मेरा एक सौभाग्य रहा इनकी असेंबली के सभी सबॉर्डिनेट्स के लिए गीता के माध्यम से स्ट्रेस फ्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है उसमें भाग लेने का. आपसे मैं निवेदन करूंगी आप इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी शुभकामनाएं हमारे सामने रखें. आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह जी,
नमः शिवाय, ओम शांति. आज जैसा पूर्व में भी बताया कि शिक्षक दिवस भी है, तो उस परम शिक्षक सुप्रीम प्रशासक को स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम की सूत्रधार और प्रशासक विंग की नेशनल चेयरपर्सन हम सभी की आदरणीय आशा दीदी जी, आज इस गरिमामय महासम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित इस संस्था की एडिशनल चीफ और देश विदेश में सेवाओं को निरंतर वृद्धि देने वाली आदरणीय जयंती दीदी जी, यहां उपस्थित एडिशनल चीफ आदरणीय मृत्युंजय भाई जी जिनको अभी आपने सुना है, आदरणीय करुणा भाई जी, हमारे बीच दिल्ली से पधारे ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीमती धनलक्ष्मी जी, बिहार से पधारे आईएएस ऑफिसर विभूति रंजन चौधरी जी, यहां उपस्थित आदरणीय पूनम बहन जी, और इस संस्था इस कार्यक्रम को जो संयोजन कर रहे हैं नेशनल हेडक्वार्टर से हमारे बहुत ही अथक सेवाधारी आदरणीय हरीश भाई जी, आदरणीय शैलेश भाई जी, और इस कार्यक्रम की मास्टर ऑफ सेरेमनी आदरणीय बीना बहन जी जिन्होंने निश्चित तौर पर सही कहा, उनका हमें अवसर मिला था। गीता ज्ञान की बहुत ही विशेषज्ञ हैं वो, उन्होंने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना प्रबोधन भी दिया था। और यहाँ सदन में उपस्थित आप सभी सम्मानीय प्रशासक, प्रबंधक और कार्यपालक और भाई और बहन, वास्तव में ये बहुत ही अद्भुत क्षण है। लेकिन आज आदरणीय आशा दीदी जी और आदरणीय मृत्युंजय भाई जी के सुनने के बाद फिर ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है। और वैसे भी मैं तो सीखने के लिए आता हूं, बोलने की तो बात बहुत कम होती है, तो ये क्षण हम सभी के लिए बहुत सीखने का है। और मैं सबसे पहले तो आदरणीय आशा दीदी, आदरणीय हरीश भाई और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सभी लोगों के लिए जो हॉस्पिटैलिटी उन्होंने दी, जो केयर उन्होंने दी और जो वातावरण वो यहां दे रहे हैं, हम सब प्रशासक वर्ग की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और निश्चित तौर पर जैसा हम सभी जानते हैं कि समाज में मूल्यों का क्षरण, मूल्यों की गिरावट निरंतर जारी है, और उसी समाज से प्रशासक, प्रबंधक या एग्जीक्यूटिव्स भी आते हैं, तो उन सब पर भी प्रभाव पड़ता है। जब ये प्रभाव पड़ता है तो प्रशासक हो या प्रबंधक हो या कार्यपालक हो, उसको तमाम दबाव, प्रभाव, तनाव से गुजरना पड़ता है। कार्यस्थलों पर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कई दबाव प्रभाव, क्योंकि मैं भी प्रशासक हूं तो मैं देखता रहता हूं, आपके ऊपर आते हैं। कार्यस्थल पर भी आ सकते हैं, आपके फील्ड में भी आ सकते हैं। कुछ दबाव ऐसे होते हैं जो आपके प्रोफेशनली आपके ऊपर आते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सोशली या सामाजिक रूप से आपके ऊपर आए, कुछ दबाव ऐसे भी होते हैं जो पारिवारिक तरीके से आपके ऊपर आते हैं, और कुछ दबाव मैंने देखा है कि सोशल मीडिया की तरफ से भी आते हैं। कई रील बन जाती हैं, कोई ऐसी न्यूज चल जाती है जिसको आपको अनावश्यक रूप से, जिससे आपका सीधा रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको वो स्ट्रेस में डाल देता है। और आखिरी जो महत्वपूर्ण दबाव आता है जिसको हम भी देखते हैं, वो होता है पॉलिटिकल प्रेशर। राजनीतिक दबाव भी कई बार विभिन्न परिस्थितियों में आते हैं। तो इन सभी चुनौतियों का हम सभी को सामना करना पड़ता है, और इसके लिए मैं फिर से आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतना सरल टॉपिक और इतना इफेक्टिव टॉपिक हो नहीं सकता, और बहुत ही सामयिक विषय उन्होंने ये रखा है, मेडिटेशन का उपयोग करके कैसे आप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का एम्पावरमेंट जरूरी है, तभी आप प्रभावी प्रशासन चला सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं, जब मैनेजर का या प्रशासक का या कार्यपालक का एम्पावरमेंट होगा, उसका सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। वर्तमान जो परिदृश्य है, हम देखते हैं कि बाहरी तौर पर तो हम सभी बहुत ही अपने आप को एम्पावर करते हैं, चाहे आपका बॉडी ली आप उससे ले लें तो बॉडी को फिटनेस रखने के लिए मॉर्निंग वॉक से लेकर जिम, योगा, सभी चीजें करते हैं, लेकिन जो हमारा इनर स्ट्रेंथ है वो दिनों दिन कमजोर होता चला जाता है। परिणाम ये होता है कि आप मेंटली चाहे तो फटीग से गुजरते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं, कई बार बर्नआउट की स्थिति भी निर्मित होती है। तो वो स्थिति को संभालने के लिए ये टॉपिक बहुत उपयोगी है, क्योंकि यदि आप मेडिटेशन का उपयोग करते हैं तो इन सभी चीजों से आप बच सकते हैं। जैसे मैंने कहा कई प्रेशर आते हैं, मैं भी, क्योंकि हरीश भाई ने कहा कि आपको मुझे अनुभव प्रैक्टिकल सुनाने की बात है, तो मैं वो बताना चाह रहा हूं कि मैं अपने प्रशासनिक जीवन में राजयोग का बिल्कुल व्यवहारिक उपयोग करता हूं। जो समय मिलता है प्रयास करता हूं कि सुबह घर से निकलते ही, जैसे आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करके निकलते हैं, इसी तरह आप अपने इनर स्ट्रेंथ की या आपका जो चेतना है जिसको लेकर के बॉडी चलाती है, उसकी भी आप यदि बैटरी चार्ज करके निकलेंगे तो कई चीजों को आपको प्रशासन में, प्रबंधन में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि वातावरण बहुत नेगेटिविटी से भरा रहता है, तमाम तरह के वाइब्रेशंस वातावरण में रहते हैं, यदि आप पॉजिटिव नहीं है तो वो सब आपको इफेक्ट करते हैं। और इसलिए उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथन करें, अपने आप को एम्पावर करें। मैं अपना एक उदाहरण बताता हूं, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अभी 1.5-2 साल पहले हमारे यहां विधानसभा का इलेक्शन हुआ, क्योंकि मुझे तो पॉलिटिशियन से ही डील करना होता है, और जो पॉलिटिक्स में रहते हैं चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो, सभी का ईगो बहुत हाई रहता है। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद ये होता है कि जो भी कई बहुत सारे सीनियर एमएलए जीतते हैं, जो एक्स मिनिस्टर्स भी होते हैं, और सभी को बड़े से बड़ा बंगला और बड़े से बड़ा कोई फ्लैट से आवास चाहिए होता है। लेकिन वो स्थिति ऐसी होती है कि जो पुराने जो एमएलए या एक्स मिनिस्टर्स हार गए हैं वो इतने जल्दी खाली नहीं करते हैं, तो लिमिटेड खाली होते हैं, उनको देना होता है। तो पहले वो अप्रोच करते हैं ऑनरेबल स्पीकर विधानसभा से कि हमको ये चाहिए, मैं इतने बार का एमएलए इलेक्ट हुआ हूं, मैं एक्स मिनिस्टर रहा हूं, मुझे ये बंगला चाहिए ही चाहिए या ये मुझे बड़ा फ्लैट चाहिए, मेरा क्लेम बनता। अब क्योंकि फ्लैट दो हैं और मांगने वाले आठ हैं, तो स्पीकर चूंकि वो भी पॉलिटिशियन होते हैं तो थोड़ा सुनते हैं, बाद में वो अपने जोर से आवाज कह देते कि मेरे पास तो दो ही हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है, अगर आपको और कोई व्यवस्था करनी है तो आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाइए। तो उन्होंने अपना प्रेशर वो हमारी तरफ रख दिया। अब मैं क्या, हमारा जो चैम्बर है हमने सामने एक टीवी लगाया हुआ है और उस टीवी पर मैं इस संस्था का जो पीस ऑफ माइंड चैनल है वो उसको मैं चलाता रहता हूं। अगर कोई मिलने वाला नहीं आ रहा तो थोड़ी सी उसका वॉल्यूम बढ़ाता हूं, तो या तो उस पर कोई मेडिटेशनल सॉन्ग चलता है या कोई क्लास कोई दीदी या बहन जी चलाती रहती है, तो पॉजिटिविटी उससे आती रहती। जब कोई मिलने आ गया तो उसको मैं केवल पिक्चर देख उसमें दिखती है। तो कई बार हम फाइल एंड कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन कोई मिलने आ गया तो सीधे खड़े हुए तो सबसे पहले मेरी नजर उस पर पीस ऑफ माइंड टेबल पर जाती है। तो क्या होता है कि आप सेल्फ रियलाइज कर लेते हैं या अपनी स्ट्रेंथनिंग कर लेते हैं कि मैं वास्तव में निमित्त हूं, करने वाला तो कोई और है लेकिन मुझे ये जॉब दिया गया है, तो वो हमको रिमाइंड कर देता है। अब जनरली क्या होता है, चैम्बर में जब आते हैं तो वैसे तो जो और बाकी लोग आते हैं स्लिप भेजते हैं, बताते हैं किस पर्पज से आए हैं, लेकिन जो एमएलए हैं उनको ये नहीं है, वो सीधे आ सकते हैं। तो हमारा जो अब लड़का खड़ा रहता है वो रोकता भी नहीं है, तो सीधे आकर के उन्होंने जैसे स्पीकर से बात करके आए, उन्होंने कहा हमको नहीं मिल रहा, हमको नहीं मिला, सीधे हमारे चैम्बर में आए। अब चूंकि मैं तो अपना काम कर रहा था, मैंने देखा वो आए तो हमने सम्मान के साथ उनको बिठाया, बात की और मेरा ध्यान चला गया पीस ऑफ माइंड पर। तो मैंने कहा कि मैं आई एम ए पीसफुल सोल, ये सिचुएशन मैंने अपने आप को। अब बाहर जो लोग थे उनके साथ वो ये देख रहे थे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि स्पीकर से लड़कर के ही लोग आए हैं तो इनके ऊपर भी चिल्लाएंगे या कुछ ऐसी बात करेंगे। तो मैंने उनके सम्मान के साथ बिठाया और पॉजिटिविटी के साथ हमने कहा सर बताइए क्या है। बोले देखिए ऐसा ऐसा है, स्पीकर के पास गए थे, मेरे पास ये इतने लोग आते हैं, बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, फला हैं, एक्स मिनिस्टर रहा हूं और मुझे बंगले नहीं दे रहे। तो मैंने कहा उनकी कुछ सीमाएं रही होंगी, अभी कुछ बंगले खाली होंगे। बोले नहीं नहीं हमको तो एक हफ्ते में चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा कर सकते हैं, पहले पूरी बात उनकी हमने पीसफुली सुनी, कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि यदि आपने रिएक्शन दे दिया तो फिर उसका काउंटर रिएक्शन आएगा, तो वो रिएक्शन ना देना वो पीस ऑफ माइंड चैनल ने मुझे इंगित किया कि भाई आप यू आर ए पीसफुल सोल, आपको रिएक्ट नहीं करना, यू हैव टू एक्ट ओनली। तो मैंने बिल्कुल पीसफुली उनकी बात सुनी सारी चीज। अब मुझे पता नहीं था कि स्पीकर से ये लड़के आए हैं कैसे आए हैं, तो शांति से मैंने सुना तो वो भी कूल डाउन हुए, हमने उनको पानी वानी की बात कही। मैंने कहा सर ऐसा है कि आपने कहा कि चार ही बंगले हैं और हमारे आठ लोग हैं, कैसे दे सकते हैं? तो हमने कहा रास्ता निकालते हैं कि हम गवर्नमेंट से एक दो और नए बंगले की मांग करते हैं, और आपको जल्दी चाहिए तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, या आपको कोई लगता है कि हमें ये पसंद आ रहा है तो मैं उसके लिए वहां से पहल कर सकता हूं। तो वो काम डाउन है, उन्होंने कहा ये ठीक है भाई, आप अगर विधानसभा पूल में बंगले नहीं है तो शासन से लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप थोड़ा सा अपने माइंड को काम रखते हैं तो कोई ना कोई वे आउट फिर आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि क्योंकि वो तो उनका ईगो हाई है, आपने भी रिएक्ट किया तो स्थिति तनावपूर्ण ही बननी, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूं अपने प्रशासक भाइयों या एडमिनिस्ट्रेटर से कि आप यदि अपने आप को अलर्ट रखते हैं और मेडिटेशन से यदि आप जोड़ते हैं तो माइंड में यदि पीसफुलनेस रहती है तो कई चीजें आपको सहजता से उपलब्ध हो सकती हैं, क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, आपको बैलेंस करने की शक्ति देता है। वो लव और ला का बैलेंस कैसे रखना है, क्योंकि प्रशासक हो प्रबंधक हो उसके पास जहां भावना होनी चाहिए वहां विवेक भी होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में आजकल इमोशनल डिफिशियंसी चल रही है, लोग भावना से शून्य होते चले जा रहे हैं, संवेदनशीलता समाप्त हो रही है, जो कि एक हमारा आत्मिक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। यदि हम संवेदनशील हैं, यदि हम प्रशासन विद ह्यूमन हर्ट करते हैं तो निश्चित तौर से आपको दुआएं मिल सकती हैं, आपको पीस मिल सकती है और बेहतर ढंग से आप जीवन में संतोष भी ले सकते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन हमको ये सब देता है कि कैसे आप बैलेंस रख सकते हैं, कैसे आप सहनशील रह सकते हैं, क्योंकि कई परिस्थितियों में आपको सहन करने की आवश्यकता रहती है, कहीं में आपको रिएक्ट करने की आवश्यकता रहती है, तो कहां आपको सहन करना है। यदि आपका माइंड पीसफुल है तो आप सही स्थान पर सहन करेंगे। फिर वो समाने की शक्ति भी देता है, हार जीत निंदा उस्तित्व तमाम चीजें लोग आलोचना करेंगे, उसको आप कैसे समाहित कर सकते हैं, आप अपने आप को संतुलित कैसे रख सकते हैं। सामना करने की शक्ति भी वो देता है, परिस्थितियां आती हैं, चैलेंजेज आते हैं, कैसे आप उसको काउंटर कर सकते हैं, कैसे आप सामना कर सकते हैं। फिर निर्णय करने की महत्वपूर्ण शक्ति, हमको तुरंत निर्णय भी कई बार लेना पड़ता है, परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है, तो उसमें आपको जो मदद करता है ये मेडिटेशन ही करता है। तो इसलिए यदि हम मेडिटेशन का उपयोग लाइफ में करते हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर प्रशासन हम कर सकते हैं। एक और मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूं। इलेक्शन के बाद जैसे सत्र चल रहा, हमारा भी लास्ट बजट सेशन था, तो तमाम दोनों तरफ के पक्ष के बड़े विधायकगण बड़े सीनियर रहते हैं, एक तरफ मिनिस्टर्स रहते हैं, सीएम रहते हैं, दूसरी तरफ लीडर अपोजिशन और अपोजिशन के सीनियर लोग रहते हैं। तो बजट सेशन में काफी लंबी बहस चलती है, कोई इश्यूज पे बात चल रही है, किसी पॉलिसी पे बात चल रही है, डिपार्टमेंट्स के अलग सभी लोग जानते होंगे अलग अलग मुद्दों पर विषय चलते रहते हैं, और सभी का ये पक्ष रहता है कि मेरा पक्ष हावी रहे। सत्ता पक्ष सोचता है कि मेरी जो बात है वो ऊपर रहनी चाहिए, प्रतिपक्ष सोचता है कि भाई अच्छा होता रहे, यहां सारी जनता के पास जाएगी तो मेरा हमारा पक्ष ऊपर रहना चाहिए। तो बड़ी तीखी बहस एक पॉलिसी पर चल रही थी। इसी बीच में जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे वो काउंटर करने के लिए अपोजिशन को रूल बुक को ऐसा हाथ में लेकर के और कोई रूल रिफर कर रहे थे, लेकिन चूंकि अपोजिशन सुन नहीं रहा था, इसी बीच में एक कोई कर्मचारी हमारा इधर से जा रहा होगा, तो उन्होंने वो रूल बुक को ऐसा दिखाने के लिए किया, तो वो रूल बुक उनके हाथ से छोड़ करके और सामने जो लीडर अपोजिशन की सीट थी उसके थोड़े नजदीक वो गिरी। जैसे ही वो बुक वहां गिरी, इतने में अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने मिसकंडक्ट करके और लीडर अपोजिशन को किताब फेंक के मार दी, और चूंकि अब वो तो इशू बनाना है, बहुत ज्यादा हंगामा हाउस में शुरू हो गया दोनों तरफ से। अब चूंकि हमारी स्थिति उस समय ये रहती है कि हमको काफी प्रेशर के साथ वहां दोनों पक्षों को देखना भी है, फिर स्पीकर को एडवाइज भी करना है कि रूल के हिसाब से वो क्या डायरेक्शन उस समय लें। तो मैंने अपना वो ईयरफोन लगाया और देखा कि दोनों तरफ से हंगामा चल रहा है, स्पीकर ने भी इशारा किया कि क्या करना चाहिए, तो मैंने स्लिप बनाई कि 10 मिनट के लिए हाउस को अभी स्थगित कर देते हैं, फिर दोनों पक्षों को आपके चैम्बर में बुला करके कोई बीच का रास्ता निकालने की बात करते हैं। तो बुलाया गया दोनों को, कहा कि ठीक है मंत्री जी के, उन्होंने कहा कि हम तो केवल इशारे के लिए कर रहे थे लेकिन छूट के गिर गई, हमने फेंकी नहीं है, लेकिन अपोजिशन को चूंकि इशू मिल गया था तो छोड़ने की बात नहीं थी। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है मंत्री जी वहां खेद व्यक्त कर देंगे, सॉरी फील कर देंगे, इसके बाद मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए सहमत हो गए, लेकिन बाद में अपोजिशन के दूसरे नेताओं ने कहा कि फिर तो हमारा इशू हाथ से चला जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं मंत्री जी को यहां से सस्पेंड करिए, आप आज की इस बैठक में भाग नहीं लेंगे, या फिर हाउस से ही आप उनको अभी पूरे सेशन के लिए निकालिए तभी हम सेशन चलने देंगे। दोबारा फिर स्थिति बनी, फिर स्पीकर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मुद्दा उनके हाथ में था उन्हें तो कोई उससे वो नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी बात वहां रखनी थी, मीडिया में उसको पब्लिसिटी मिलती, तो वो नहीं माने। तो स्पीकर ने कहा देखिए क्योंकि टाइम बाउंड बिजनेस है, बजट तो पास करना ही होगा, इसलिए हम प्रोसीडिंग नहीं रोकेंगे, यदि आप लोग सहमति नहीं रह रहे हैं तो हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और ये हुआ कि ठीक है हाउस शुरू होगा, हाउस शुरू हुआ, जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे उन्होंने हाँ खेद व्यक्त किया कि हाँ मैंने इसे अनजाने में गिर गई लेकिन फिर भी मैं वो करता हूं, लेकिन अपोजिशन ने बात नहीं मानी, और जैसे ही हमने बिजनेस आगे बढ़ाया वो हंगामा उन्होंने शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। फिर जो वेल रहता हाउस का, जो हमारी टेबल के नजदीक एक जगह रहती है, स्पीकर की टेबल चूंकि ऊपर रहती है, तो वो वहां नजदीक में आकर के और नारेबाजी करने लगे। अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है, शोर भी मच रहा है, उसी बीच में एक जो सीनियर मेंबर थे अपोजिशन के, उन्होंने हमारे टेबल पर जो रूल बुक रखी थी उसको उन्होंने फाड़ा, उन्होंने कहा कि जब नियम के हिसाब से कार्रवाई नहीं चल रही है तो इसकी क्या जरूरत है, और वहीं उन्होंने बिखरा दी उसको, उसके कपड़े फाड़ करके पेज और मेरी टेबल के सामने ही उसको फेंक दिया। अब मैं चूंकि मैंने वो हेडफोन लगाया हुआ था, अब मुझे एकदम क्लिक हुआ कि मैं मुझे पार्टी नहीं बनना, ना मुझे अपोजिशन के साथ जाना है, ना मुझे सत्ता पक्ष के साथ जाना है, मुझे निष्पक्ष रूप से यहां कार्य करना है। इसलिए मैंने बिल्कुल उपराम भाव से निर्लिप्त होकर के मैंने कहा कि ठीक, कोई रिएक्शन हमने नहीं दिया, नहीं तो उस समय ये हो सकता था कि हम रिएक्ट करते कि ये क्या तरीका है आपका कि मेरे ऊपर आप किताब फेंक रहे हो, हमारा तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने उसको ऐसे इग्नोर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और खैर कार्रवाई चलती रही, हंगामा होता रहा, और अल्टीमेटली जो हमारी लिस्ट ऑफ बिजनेस थी, कार्यसूची थी, उसका पूरा काम पूरा हुआ और फिर जाकर के हाउस एडजर्न हुआ। तो जो हमारी ऑफिसर्स गैलरी रहती है उसमें आईएएस सीनियर रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे, तो वो सब खड़े थे मेरे अंदर। तो मैंने कहा, उनको हाथ मिलाया, कहने यार मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतने हंगामे के बीच में, इतने टेंशन के बीच में आपने कैसे झेल लिया, कैसे आपने संतुलन बनाए रखा। तो मैंने उनको कहा कि इसका राज केवल एक ही है कि यदि आप राजयोग करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप संतुलन बना सकते हैं। तो ये उपयुक्त है राजयोग की, मेडिटेशन की, प्रैक्टिकल जीवन में, कि आपके जीवन में वो संतुलन लाता है, तो निश्चित तौर पर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं एक छोटा दृष्टांत सुना करके फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। एक नए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुए तो उन्होंने अपने पिताजी को बुलाया कि आप आइए हमारा चैम्बर देखिए, कैसा चैम्बर है, कैसा अच्छा है वो। तो वो पिताजी गए वहां तो देखा, उन्होंने उसकी चेयर के पीछे खड़े होकर के हाथ रख के खड़े हो गए और चारों तरफ देखने के बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो उसने कहा, ऑफकोर्स पिताजी, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो पिता को लगा कि इसको ईगो आ गया, घमंड आ गया, तो पिताजी वहां से निकल के और गेट की तरफ जाने लगे। तो उसने रोका कि पिताजी क्या बात हो गई। तो फिर उन्होंने पूछा वही बात कि हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो उसने कहा कि पिताजी, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो बोले, अभी तो तुम एक खुद का कह रहे थे। बोले, उस समय मैं सही कह रहा था क्योंकि पिता के हाथ मेरे कंधों पर थे और जिस पिता के हाथ इस पुत्र के कंधों पर हो तो मोस्ट पावरफुल हो सकता है। तो यहां परम पिता के हाथ यदि हम अपने कंधों पर रखवा सकें, यदि हम अपने सिर पर रखवा सकें, मेडिटेशन सीख सकें, जो चीजें यहां सिखाई जा रही हैं, तो इससे अच्छा प्रभावी प्रशासन और कोई दे ही नहीं सकता। मुझे उम्मीद है हम सभी लोग यहां सर के सीख जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ओम शांति। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अवधेश भाई जी का। अपने प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल के साथ आपने हम सभी को इंस्पायर किया। बहुत देर से सुन रहे थे, थोड़ा दिल चाह रहा था कुछ चेंज हो जाए। तो हमारे बीच में दूर लखनऊ से चल के आई है कुमारी सुदीति। आप कोरोना काल से शुरू हुए हेडक्वार्टर द्वारा ऑनलाइन राजयोगी किड्स द्वारा आयोजित डांस प्रतियोगिता की विजेता रही है। तो अभी आप हमारे बीच में मन की वीणा गाती है इस गीत पर एक नृत्य प्रस्तुत करेगी। उसके साथ हम भी थोड़े से मन से खुश होके नाचेंगे। अब तक जो सुना है उसको आत्मसात करेंगे।
स्वागतम स्वागतम महफिल सजा कर करते हैं। बहुत 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 दिल से धन्यवाद आदरणीय दीदी और मैडम धनलक्ष्मी जी, आपको पुष्पगुच्छ देकर के आपकी भविष्य उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुनेंगे आदरणीय आज की इस कार्यक्रम की गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती ए धनलक्ष्मी जी। आप आईएएस है, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं। आप आज के विषय पर अपना विचार हमारे बीच में रखेंगे आदरणीय धनलक्ष्मी बहन जी।
ओम शांति। आदरणीय मंच पर विराजमान आज का मुझे अदिति जी और मेरे प्यारा ऑडियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स और ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहनों और भाइयों, आप सबको मैं अपना हृदयपूर्वक नमस्कार बोलते। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वाइट मी इन टू सच अ वंडरफुल स्पिरिचुअल गैदरिंग एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू ऑन माई एक्सपीरियंसेस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर विद लॉट ऑफ मेडिटेटिव एक्सपीरियंस, विद लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मैं ये सब बोलने के पहले जब वो सिस्टर, दूसरा सिस्टर अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसमें वो ब्रह्म कुमारी जी की ये संस्थान है, ये दुनिया में 110-120 कंट्रीज में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुकी है बोल के ये देखने के बाद मेरे को ऐसे लग रहा था, आप सबके साथ मैं बैठ के वही देख रहा था, ऐसे लग रहा था भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये गारंटी मार्ग है तो वो स्पिरिचुअलिटी मार्ग है। ये मार्ग हमको पूरा दुनिया से स्पेशल कर सकते और आगे लीडरशिप रोल में लेके जा सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर bringing out such good institutions in the world. मैं अपना विचार रखने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है बोल के यहां कितना लोग बिलीव करते, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत कम लोग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है, एक कला है बोल के कितना लोग, बहुत ज्यादा लोग। मेरा वोट आपके साथ। मैं ये बोलना चाह रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन दो इट हैज लॉट ऑफ स्ट्रक्चर, दिख रहे क्या मेरा प्रेजेंटेशन, मेरे प्रेजेंटेशन दिख रहे, या सो एडमिनिस्ट्रेशन दो इट इज सम स्ट्रक्चर, इट इज अ आर्ट। क्यों आर्ट कहना करते, हम आर्ट में ना लोग को सिखाते, अपना कला किसी और को सिखाते, गाइड करते, इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को आर्ट बोलते। इसके अलावा स्केर्स रिसोर्सेस है। इंडिया की पॉपुलेशन कितना है, अगर मैं एक स्कॉलरशिप ओपन करूं, अपॉर्चुनिटी पोर्टल ओपन करूं, कितना बच्चा स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन डालते, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना पैसा थोड़ी होता सबको स्कॉलरशिप देने के लिए। ये एक कला नहीं है क्या, मैं उसमें प्रायोरिटाइज करूं जिसका ज्यादा जरूरत है, जिसका ये बहुत काम ज्यादा करेगा, किसका ये और यूजफुल होगा बोल के मैं डिसाइड करने वाला, ये कला नहीं है क्या, ये बड़ा कला है। एक तो रिसोर्सेस को हम केयरफुली हैंडल करते, दूसरा कितना कॉन्फ्लिक्ट हम डेली हैंडल करते। सब बोलते मेरा ही आइडिया करेक्ट है, सब बोलते मेरा ही विचार सही है, ये हम हैंडल करते डे इन डे आउट, ये एक कला नहीं है क्या, ये सबसे बड़ा कला है। और फाइनली लीडिंग विद द विजन, अगर मैं एक बड़ा विजन के साथ मेरा टीम को, मेरा ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सक रहे, वो तो सबसे बड़ा कला है, उसके कोई साइंस जरूरत नहीं है। मेरे पास एक अच्छा विजन है तो मैं बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते,
इसीलिए मैं बोलते एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कला, इट्स नॉट अ साइंस. बट मैं एक उस्ताद है, मेरे पास वर्ल्ड से वर्ल्ड का बेस्ट टूल्स है मेरा हाथ में. मैं बड़ा आर्टिस्ट बन सकते क्या? नहीं. मेरा मन में वो आर्टिस्टिक बेंड ऑफ माइंड होना है, मेरा मन में कंपैशन होना है, मेरा मन में नेचर को महसूस करने की शक्ति होना है, तब मैं बन सकते बेस्ट कलाकार, बेस्ट आर्टिस्ट. सो मोर देन द स्किल्स, मोर देन द आर्ट और द इक्विपमेंट, मेरा मन की विचार, मेरा इनर स्ट्रेंथ, मेरा मन की क्लैरिटी, यही बनाते मेरे को सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर. सो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए मैं क्या करना है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए मैं 6 गुना चाहिए मेरे को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बना के. क्लैरिटी ऑफ थॉट, मैं जो कर रहे वो सही कर रहे या गलत कर रहे. अगर मेरा मन में ये विचार है कहीं ना कहीं मैं गलत रास्ते पे जा रहे, मैं गलत डिसीजन लेने वाला है, मैं वही की वही रुक जाना है. मेरे को क्लैरिटी होना है कि मैं सही काम कर रहे और वो भी जितना जरूरत है उतना कर रहे, वो कैसे जरूरत है वैसे कर रहे. सो क्लैरिटी ऑफ थॉट है तो मैं बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते. और डेली मेरा लाइफ में कितना कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज को मैं हैंडल कर रहे, कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैं हैंडल कर रहे, कितना डिफरेंट टेम्परमेंट्स का पीपल को मैं हैंडल कर रहे. कोई किसी को जल्दी गुस्सा आ जाते, किसी को डर ज्यादा पैदा हो जाता है किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देके, किसी को टेंशन ज्यादा पैदा हो जाता कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को देके. उन सब को मैं अगर पीसफुली पेशेंस के साथ टॉलरेंस के साथ हैंडल करके, जिसका वीकनेस क्या है वो पता करके उसको मैं पेशेंटली हैंडल करूं. किसी बंदा मेरे से गुस्सा में बात करूं, मैं ये समझ लिया कि उनका वीकनेस वो है, मैं तो ठीक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते ना, मैं उनका प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश भी करूंगी और उसको मन में नहीं लेंगे, मैं अपना काम जस्टिस से करते. इसीलिए पेशेंस और टॉलरेंस बहुत अच्छा गुण होता, दैट इज द सेकेंड वर्च्यू फॉर बिकमिंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. थर्ड वन, इमोशनल स्टेबिलिटी. अगर मैं गुस्सा में किसी के ऊपर गुस्सा में कोई डिसीजन ले लिया, वो सही डिसीजन होगा? नहीं, कभी नहीं होता. गुस्से में जो भी डिसीजन लेता वो कभी सही नहीं होता. अगर मैं जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी काम निपटना है, जल्दी इसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले, वो भी कभी अच्छा डिसीजन नहीं होता. अगर मैं किसी से डर के, मेरा सीनियर ऑफिसर या कोई पॉलिटिकल पावर या कोई मॉब की प्रेशर में आके कोई डिसीजन ले लिया, आप लोग मानेंगे कि मैं अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूं? नहीं मानेंगे ना. इसीलिए इमोशनल स्टेबिलिटी to take decisions without fear, without haste and without anger. ये तीन मैं control कर दूं, इसको मैं handle कर सकते तो मेरा emotion बहुत stable होगा, तब मैं जो भी decision लूंगी, किसी को help भी करूं किसी को ना भी help करूं, उसका एक strong reason होता. इसके अलावा मेरे को next, I don't know whether my slides are visible. ओके, इट्स नॉट विजिबल. ओके, मोर एसेंशियल थिंग्स आर फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी. आपको ये कॉन्फिडेंस आ गए कि ये मैडम अच्छा ये डिसीजन मेरे लिए लेंगे, हो सकता है मैं आपके लिए बुरा भी डिसीजन वर्डिक्ट दूं. मैं एक जज बन के बैठा है और आप मेरे सामने आया, मैंने एक डिसीजन लिया, उसके वजह से आपका नुकसान भी हो रहे हैं. आपको ये पता है कि ये मैडम अपना बहन को भी यही डिसीजन देंगे, अपना भाई को भी यही डिसीजन देंगे, अपना ऑफिसर को भी यही डिसीजन देंगे, अपना फैमिली सिचुएशन में उनके सामने गए तो तब भी यही डिसीजन लेंगे, अपना फ्रेंड्स को भी ये फेवर नहीं करते, तब आप वो डिसीजन को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करते या नहीं करते। आप लोग देख रहे हैं लैंड एक्विजिशन हो रहे, बड़े रोडवेज बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, कितना लोग का अपना घर टूट रहा है, कितना लोग का अपना जीवन धारा, वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड जा रहे, तब भी उन लोग रिस्पेक्ट करते उस डिसीजन को, क्योंकि उन लोग को बिलीफ है कि ये मेरे साथ सिर्फ अन्याय नहीं हो रहे, मेरे साथ 10 और फार्मर्स को, मेरे साथ 100 और घर टूट रहे, और ये सारे एक अच्छा चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए हो रहे, ये किसी को नुकसान करने के लिए नहीं हो रहे, ये किसी को अच्छा ही करने, हजार लोग करोड़ों लोग को भलाई के लिए मैं आज ये सफरिंग को हो रहा, ये कॉन्फिडेंस किसी बंदा को है तो कितना भी मुश्किल है मेरा डिसीजन वो मान लेगा, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दैट इज फेयरनेस। नाउ कम्स एम्पथी। मैं हर एक सब्सिडी, हर एक स्कॉलरशिप देते उसके पीछे एक बच्चा की फ्यूचर है, ये सोच के मैं अगर काम करूं डेली ऑफिस में तो मैं कभी गलत काम नहीं कर सकती, और कोई भी मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये काम आपने ठीक से नहीं किया। सो हर फाइल के पीछे, हर सब्सिडी के पीछे, हर स्कीम का आप पैसा रिलीज करने के पीछे सम फैमिली इज डिपेंडिंग ऑन दैट, सम बच्चा इज डिपेंडिंग फॉर हिज एजुकेशन ऑन यू। इसीलिए आप हमेशा एम्पैथेटिक डिसीजन लेना है। इसके अलावा आप रूल्स एंड रेगुलेशन करते और ये बोलते दुनिया को मैं बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप हमेशा स्ट्रिक्ट ऑफिसर रहे, बट यू शुड ऑलवेज थिंक एनी डिसीजन, एनी वर्डिक्ट यू पास इज गोइंग टू शैटर द होप ऑफ समबडी। यू कैन इधर मेक और ब्रेक समबडीज लाइफ विद योर स्ट्रिक्ट डिसीजन। सो एम्पैथी के साथ सोचना है कि मैं अपना डिसीजन करेक्टली ले रहे या नहीं ले रहे। उसके बाद रिजिलियंस, मेरे को कितना भी प्रेशर आए, कहीं से भी आए, आप देख रहे ये 30 इयर्स में ये नहीं, मैं ये नहीं बोल सकते कि मैं कभी प्रेशर में नहीं आया, मेरे को बहुत सारे जगह पे पॉलिटिकल प्रेशर आया, बॉस लोग से प्रेशर आते, और फ्रेंड्स रिलेटिव्स कलीग उन लोग भी कभी प्रेशराइज करते, थोड़ा मेरे लिए छोटा सा फेवर कीजिए, आप कर सकते, तो मैं क्या करते इमीडिएटली, नहीं आई डोंट कम अंडर प्रेशर, मैं सोचते कि ये सही या गलत और उसके हिसाब से मैं अपना डिसीजंस लेते। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर दिया, आपका सिमुलेशन, आपको किसी ने तनाव डाल रहे या आपके प्रोमो जानबूझ के गुस्सा करवा रहे या जानबूझ के आपके सामने नाटक कर रहे, वो आप समझ लिया कि ये मेरे सामने नाटक कर रहे, ये स्टिमुलस है, ये मेरे से फेवर लेने के लिए ये सब कर रहे बोल के, आपने जिस दिन आइडेंटिफाई कर लिया आप मेच्योर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते। सो द डिफरेंस बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स इज विजडम। मैंने सही डिसीजन जब ले सकते तब मेरे को पता चल रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से मेरे को अप्रोच कर रहे हैं। मैं डेली यही करते, मेरा कोलिग्स कुछ लोग यहां बैठा है उन लोग को पता है मेरे बारे में। सो मेडिटेशन इज ट्रेनिंग द माइंड। आप सुबह ऑफिस से सुबह उठने के पहले फर्स्ट क्या चेक करते, आपका फोन पूरा चार्ज है या नहीं चेक करते ना, ऐसे ही माइंड को भी ऑफिस को निकलने के पहले, अपना दिन का शुरुआत करने के पहले अपना माइंड को 10 मिनट चार्ज कीजिए, 15 मिनट चार्ज कीजिए, आधा घंटे। मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, आई डोंट प्रीच व्हाट आई डोंट प्रैक्टिस, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं सुबह 10 मिनट 5 मिनट जितना, 4:30 बजे कोई फ्लाइट पकड़ना है तो भी मैं उसके 15 मिनट पहले बैठ के सोचूंगी कि आज मैं क्या करना है। बहुत सारे विचार आता रहता जाता रहता, आई एम नॉट अ परफेक्ट मेडिटेशनिस्ट, आई कांट डू
मेडिटेशन लाइक यहाँ जो एक्सपीरियंस सिस्टर्स बैठे हैं इन लोग जैसे मैं कर नहीं सकते, बट आई एम क्रिएटिंग ए सेल्फ अवेयरनेस. मैं आज क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे या गलत कर रहे, आज क्या क्या मैं अचीव करना, एक छोटा सा स्लिप में मैं लिख देती. चार आइटम है, पांच आइटम है. शाम में जब सोने जा रहे मैं एक बार चेक कर लेते कि मैं ये सब कर लिया या नहीं. जब तीन चार आइटम भी मैं कर लिया तो मैं बहुत खुशी से सो जाते. अगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहे तो मेरे को रीजन होगा, स्ट्रांग रीजन, वो कर नहीं पाया, वो भी मेरे को खुशी देते कि मैं अच्छी तरह सो सकते. मेडिटेशन की बेनिफिट्स मैं आपको बता रहे जल्दी जल्दी. एक तो क्लियर माइंड, आपको अगर पानी एक ग्लास बर्तन में मड्डी पानी ले लिया, उसको आप पांच मिनट छोड़ दीजिए, पूरा मड नीचे सेटल हो जाएगा, क्लियर पानी. जैसे ही कोई भी आपके सामने बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, दो मिनट बैठिए, डीप ब्रीथ ले लीजिए, पांच मिनट, दो मिनट साइलेंस रखिए, उसके बाद उस प्रॉब्लम को हैंडल कीजिए. आपको भी आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आते है कि मैं अब जो ये तरीका फॉलो कर रहे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो सही लगेगा. मेरे साथ जो मेरा सामने व्यक्ति बैठा है उनको भी मेरा काम पोशर, मेरा कॉन्फिडेंस वो देखे ना, उसको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस लगेगा कि मैं सही डिसीजन लेने वाले हैं, मैं उसका प्रॉब्लम को सही सॉल्यूशन लेने वाले हैं बोल के. यही है क्लियर माइंड से थिंक करना और स्ट्रेस रिलीफ, बहुत पेशेंस से कोई भी काम करना और हमेशा दूसरे व्यक्ति के जगह पे अपने को रखना. अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, मैं ये सोचूंगी अगर मैं उनकी पोजीशन में है तो मैं क्या कर सकते, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद मी इफ आई एम इन हिज सिचुएशन. तो मैं जो डिसीजन तब लूंगी ना, द बेस्ट पोजीशन फॉर हिम ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड एम्पथी, पुटिंग योर सेल्फ इन अदर्स फुट. स्ट्रांग फोकस, आपको कुछ भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता, दस काम है, हजार काम है एक एक व्यक्ति के सामने, आपको जो प्रायोरिटी में करना है, अच्छा करना है वो पहले करना है. आप एग्जाम में भी लिखने के लिए लोग बोलते ना, आपको सबसे अच्छा आंसर पहले लिख दो, इंप्रेशन क्रिएट करो, यही है. यू हैव टू प्रायोरिटाइज एंड रेसिस्ट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन. जो बेकार काम है वो बहुत डिस्ट्रैक्टिव अट्रैक्टिव रहता है. डीप रेजिलेंस होना है, हो गया मेरा. सो फाइनली सिंपल, आप हर मीटिंग हर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के पहले 10 मिनट साइलेंस रहिए, ये एक जापानीज टेक्निक है. आप साइलेंस के बाद मीटिंग शुरू करिए, आपका कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता, पीपल ज्यादा लिसन करते और प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन आसानी से निकलते. और कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के पहले डीप ब्रीथ ले लीजिए. हम अपना बच्चों को भी बोलते हैं इंटरव्यू को जाने के पहले 5-6 डीप ब्रीथ लेके जाइए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. इट कम्स द माइंड. 1 मिनट साइलेंस बिफोर एवरी डिस्कशन विल क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द आउटसाइडर एंड विद इन यू ऑल्सो टू टेक डिसीजन विथ क्लैरिटी. फाइनली ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप क्या है? लीडरशिप विथ टैलेंट एंड पेशेंस, इनर काम माइंड होना है आपके पास, कंपैशन होना है और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी होना है. काम एंड सेल्फ अवेयर डिसीजंस लिया तो आपका बेस्ट सॉल्यूशंस निकलेगा. मेडिटेशन लग्जरी नहीं है, ये एसेंशियल है आजकल सिचुएशन में. सो मैं ये हम्बली बोलूंगी कि आप सब छोटा छोटा वे में, प्रोफेशनल मेडिटेटर्स नहीं है तो भी थोड़ा सा माइंडफुल एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए. जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू मी.
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम श्रीमती ए धनलक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छा चिंतन करके हमारे सामने स्पष्ट किया. अभाव प्रभाव स्वभाव दबाव में ना आए और इसके लिए मेडिटेशन करें. मेडिटेशन एक प्रोफेशन नहीं है, मेडिटेशन एक नेचर बन जाए हमारा. प्रोफेशन नहीं बनाना है इसको. वी आर नॉट मेडिटेशन प्रोफेशंस, वी आर ऑल मेडिटेटर्स बिकॉज मेडिटेशन इज अवर नेचर. मेडिटेशन हमारा स्वभाव है, इसलिए हम अपने स्वभाव में मेडिटेशन को पुनः जगह दें, अपने दबे हुए स्वभाव को जगाएं, अपने ओरिजिनल नेचर को जगाएं, तब हम अच्छे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं. इन्हीं विचारों को आपने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद. आगे के वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा, समय की सुई भागती जा रही है, इसलिए थोड़ा सा 5-7 मिनट के अंदर ही अपने विचारों को हमारे सामने रखने का प्रयास करें. अभी हमारे बीच मेडिटेशन प्रैक्टिस कराएंगी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी. आप जोनल कोऑर्डिनेटर है एडमिनिस्ट्रेशन विंग के जयपुर के, और जयपुर सब जोन के आप इंचार्ज है ब्रह्मा कुमारी के. 200 से ज्यादा ब्रांचेस को आप संभालती है, आप एक कुशल प्रशासिका भी है, तो आप अभी मेडिटेशन हम सभी को प्रैक्टिकली कराएंगी आदरणीय पूनम दीदी. और आप सबके लिए एक सूचना है, कल सवेरे से जो भी सेशंस कॉन्फ्रेंस चलेगा यहाँ के बाजू में हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर चलेगा. सवेरे 6:15 6:15 से आप सबका पहला मेडिटेशन सेशन शुरू होगा, जिसमें आप सभी को जरूर हाजिर होना है. इतने लंबे सफर करके आप आए हैं, उसका पूरा लाभ लेना है. और कल और परसों जो भी सेशंस चलेंगे मेडिटेशन हॉल में कॉन्फ्रेंस हॉल में चलेंगे, सवेरे का सेशन कोई भी मिस नहीं करिएगा. 6:15 आप सभी को एक्सरसाइज भी कराएंगे बहुत सुंदर तरीके से, उसके बाद मेडिटेशन सेशन होगा.
ओम शांति. योगेश्वर परमात्मा की प्रिय योगी संतानों, मंच पर विराजमान हमारे प्रबुद्ध वक्तागण, सभा में उपस्थित आत्मिक रूप में भाई और बहनों, हम सब बहुत समय से एडमिनिस्ट्रेशन की कला और मेडिटेशन का उससे जो संबंध है वो सुन रहे हैं. तो प्रशासन ने हमें कुछ अपनी विशेषताओं को, गुणों को उजागर करने की जरूरत है, जिससे हम एक कुशल प्रशासक बने. और वो इनर क्वालिटीज मेडिटेशन से ही हम डेवलप कर सकते हैं. इनर स्ट्रेंथ जब हम डेवलप करेंगे, तब हम अपनी सुप्रशासन की कला को बढ़ा पाएंगे. तो मेरा स्वयं का विकास, स्वयं की पर्सनैलिटी ऐसी हो जिस अपनी इनर पर्सनैलिटी के आधार से हम अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए माइंड की ट्रेनिंग करते हैं, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लेते हैं, और जो माइंड हमारा आज अपसेट है, डिस्टर्ब है, फिर से उसको प्रॉपर गाइडेंस से हम पीस, कामफुल और स्टेबल बनाएं और माइंड की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करें. मैं आगे ज्यादा नहीं कह के आपको कुछ थॉट्स दूंगी. ये थॉट्स सेल्फ कंट्रोल डेवलप करेंगे और सेल्फ कंट्रोल से हमारा बिहेवियर भी कंट्रोल होगा, क्योंकि थॉट पावर एक बहुत बड़ी पावर है। माइंड जो एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है, हम पॉजिटिव सोचते हैं, ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते हैं तो ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम वाइसेस के बारे में सोचते हैं, फियर, एंगर, हेट्रेड, क्रोध आदि, तो हम वीकनेसेस को डेवलप करते। इसलिए हम अपने आप को पहले जाने, स्वयं से संबंध बनाए, मैं कौन हूं, सब स्थिर होके बैठेंगे, एकाग्रता से सुनेंगे, और जो कुछ मैं आपको थॉट्स दे रही हूं उसको अंदर रिवाइज करते हुए महसूस भी करेंगे। मैं ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हूं, शरीर मुझ आत्मा का वस्त्र है, साधन है, इसके द्वारा कार्य लेने वाली मैं आत्मा, मास्टर आत्मा मस्तक में, प्रकृति में स्थित हूं। मुझ आत्मा में अनंत प्रकाश है, असीम शक्ति है, ऊर्जा है, और ये प्रकाश पवित्रता का है, शक्ति पवित्रता की है। प्योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, पावरफुल थॉट्स मुझ आत्मा को स्ट्रांग बनाते हैं। मैं पवित्र शक्तिशाली आत्मा हूं, जहां पवित्र विचार हैं तो मन में शांति है। शांति मुझ आत्मा का गुण है, शांति मेरी शक्ति है। मुझे शांति के खजाने को बढ़ाना है और इसके माध्यम से कार्य करने हैं। मैं शांत आत्मा, मन शांत, दिमाग शीतल और इंद्रियां शांत, मेरा इंद्रियों पर शासन है, नियंत्रण है। मैं आत्मा इंद्रियों की राजा, जहां पवित्रता और शांति है वहां स्वतः ही प्रेम भाव आता है। प्रेम मुझ आत्मा का दिव्य गुण है, अलौकिक प्रेम, पवित्र प्रेम। मैं प्रेम से भरपूर हूं और प्रेम की भावना मुझ आत्मा में क्षमा का गुण, सहनशीलता का गुण, मधुरता का गुण लाती है। मुझे प्रेम के गुण पर फोकस करना है और बार बार मैं प्रेम में आत्मा इसका चिंतन करना है। इन गुणों का मिश्रण मुझ आत्मा की पावर शक्ति बन जाता है, तो मैं कमजोर नहीं, चिंतित नहीं, भय में नहीं, लेकिन पावरफुल शक्तिशाली आत्मा हूँ और इन कमियों पर विजय प्राप्त करती हूँ। इन गुणों का अनुभव परमात्मा सर्वशक्तिवान से होता है। परमात्मा जो गुणों के भंडार हैं, मेरे परम पिता हैं, उन पिता की मैं आत्मा संतान। जो बाप के गुण वो मुझ आत्मा बच्चे के गुण। मेरा पिता सर्वशक्तिवान शांति का सागर, तो मैं आत्मा भी शांत शीतल। वो प्रेम का सागर, तो मैं आत्मा भी प्रेम और करुणा से रहम दया से भरपूर। वो पवित्रता के सागर, तो मैं आत्मा भी व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त। तो परमात्मा पिता की मैं आत्मा हूँ, उनके गुणों को अपनाने वाली। इन गुणों का जब अंदर विकास होता है चिंतन के माध्यम से, तो खुशी बढ़ती है, खुशनुमा जीवन बनता है और मुझ आत्मा का एक पॉजिटिव ऑरा भी बिल्डअप होता है, जिससे मैं बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी कर लेती हूँ। तो मुझे अपने ऑरा को बनाना है और अपने वाइब्रेशन को स्ट्रांग करके परिस्थिति पर विजय पानी है। मैं विजयी सफलता मूर्त एक कुशल प्रशासक हूँ। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरल तरीके से गहन अनुभूति कराई आपने। मेडिटेशन क्या है इसका एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर सर विभूति रंजन चौधरी जी। आप IAS है, स्पेशल सेक्रेटरी फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पटना से आप बता रहे हैं, बिहार से। आपसे अनुरोध है आज के विषय पर अपने विचार सकते।
ओम शांति। मंच पर आसीन परम आदरणीय महानुभवगण एवं देश के विभिन्न शहरों से आए हुए इस हॉल में, डायमंड हॉल में उपस्थित प्रशासनिक पदाधिकारीगण एवं भाई और बहन, मुझे तो क्षेत्र के कार्यालयों में जाने का काफी अवसर मिला, लेकिन आज मुझे पहली बार यहां आने का मौका मिला और आने के साथ ही मुझे आयोजकों के द्वारा, खासकर हरीश भाई साहब के द्वारा अपना विचार रखने के लिए कहा गया। इसके लिए आयोजकों, खासकर हरीश भाई साहब को मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी संस्था से आने जाने का कार्यक्रम, ये जो सिलसिला जो है पिछले कुछ वर्षों से मेरा रहा, एक छोटा सा ये एक हिस्सा है। इनफैक्ट मैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में और बराबर मैं टीवी वगैरह पर सुनता ही था, जानता भी था। मैं एक जिला में जब पदस्थापित था प्रशासनिक अफसर के नाते, इनफैक्ट ब्रह्मा कुमारी संस्था का वहाँ के भाई बहन हमारे यहाँ कार्यालय में आते जाते थे, रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधना और भी कोई फंक्शन होता था, बहन सब आती थी कार्यालय में, विभिन्न ऑफिसर्स के पास जाती थी। तो कुछ दिनों के बाद पता चला जब मेरे न्यायालय में लैंड डिस्प्यूट जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था का चल रहा है। तो बाद में हमारे भाई बहन ने कहा जी सर ये केस है काफी वर्षों से, 10 वर्षों से चल रहा है मेरे न्यायालय, तो इसको देखा जाए। तो हमने सोचा जी ठीक है, तो पहले हमको देखने दीजिए क्या मैटर है, कहाँ है, कैसे फंसा हुआ है। तो फिर मैंने देखा अपने एडवोकेट, उनके भी एडवोकेट को बुलवाया, और जो एंटी पार्टी था थोड़ा दबंग था, पैसा वाला था, बाहर रहता था, शायद विदेश में रहता था, या उनके एडवोकेट सब आते जाते होंगे। तो मैंने देखा, मतलब ठीक है समय दीजिए, पहले हम लोग सुनवाई करते हैं। बाद में रिक्वेस्ट उन्होंने कहा जो सर संस्था, बोले संस्था में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि फिर जाना आना शुरू करेंगे तो लोग समझेंगे जो निष्पक्ष न्याय जो है नहीं होगा, जो है क्या कहते पक्षपातपूर्ण न्याय हो सकता है। हम बोले पहले आप, पहले कोर्ट का फैसला हो जाने दीजिए, तो फिर जो है मैं देखता हूँ कहाँ क्या है। तो एक बार लैंड डिस्प्यूट के मामले में पूरे टीम के साथ जो है संस्था गया भी था, देखा भी क्या मैटर है। तो लगभग 6 महीने 7 महीने का समय लिया, उनका फैसला जो है और हो गया, और संयोग कहिए कि बाद में उस पार्टी को, एंटी पार्टी को जो है कंप्रोमाइज करना पड़ा उनको। हमने कह दिया जब जाइए आपका ये फैसला हो गया है, और कहीं पर भी एंटी पार्टी जाएगा कुछ भी नहीं हो सकता। बाद में 2-4-5 महीने के बाद उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आज मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं गया भी हूँ बाद में देखने के लिए, बहुत ही शानदार कार्यालय जो ऑफिस होता है या हॉल जो होता है मेडिटेशन हॉल वहाँ बन रहा है। कई बार मैं ये फिर जाने का मौका मिला, तो लगा उसके बाद से मुझे जो है क्या कहते हैं, और काफ़ी प्रलोभन दबाव पॉलिटिकल अन एंगल से दबाव भी पड़ा, लेकिन मैंने कहा जी ठीक है मैं देखता हूँ। लेकिन आज वहाँ जाने के बाद लगता है जो कुछ न कुछ वहाँ लक्ष्मी वास कर रहा है, बहुत शानदार जो है वहाँ हॉल बन रहा है उस कार्य। वहाँ पर जाने के बाद फिर दूसरे जिला में मुझे जाने के मिला, तो और भी सारा कार्य प्रशासनिक अफसर के नाते हम लोग जो है क्या कहते हैं फेस करते रहते हैं। तो आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी जो है मैंने सुकून और क्या कहते हैं शांति मिली। हम भी को देखने में लगा जो नहीं, माउंट आबू जो है यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है, और क्या कहते हैं तो प्रशासनिक अफसर के नाते यह संस्थान तो सभी विद्वान महावक्ताओं ने सब कुछ कह दिया। और वास्तव में है क्या, जो हम लोग भी जब दिनचर्या है जो मैं सुबह में मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ, तो आधा घंटा कम से कम जो है टीवी पर ही खोल करके राजयोगी का कुछ संगीत आता है, मुरली होती है, फिर कुछ स्पीच हम लोग सुनते हैं। तो पॉजिटिव व्यू जो है एकदम दिमाग में सेट होता है, दिनचर्या जो है यदि आप पॉजिटिव व्यू के साथ आप आगे दिन, तो दिन भर आपका जो है कार्यक्रम जो है अच्छा रहेगा। तो हम यही आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे, वास्तव में मेडिटेशन जो है क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा है, और आज के तेजी से बदलते प्रशासनिक परिवेश में जितनी तनाव हम लोग झेल रहे हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी जो आप लोगों के पास अपनी अनुभव ने रखा, वास्तव में एक अधिकारी से इतना तनाव रहता है, फिर भी एक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह हर परिस्थिति में शांत संतुलित और निष्पक्ष निर्णय जो है लें। लेकिन जब कार्यभार तनाव और दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता, सहनशीलता, सकारात्मक सोच सब प्रभावित होने लगता है। ऐसे में मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जो न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे अंदर की कार्य क्षमता, एकाग्रता और सहनशीलता को भी बढ़ाता है। मेडिटेशन न केवल हमें बेहतर अधिकारी बनाता है बल्कि बेहतर इंसान भी बनाता है। आप एक बार करना शुरू करिए, देखिए आपको कैसे आप में परिवर्तन होना शुरू होगा। अतः आप सभी से मेरा आग्रह है कि हम सब प्रतिदिन कुछ समय निकाल करके मेडिटेशन के लिए निकालें और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना रहे हैं। ध्यान से हम न केवल प्रशासन को प्रभावी बना सकते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है यह जो कार्यक्रम दो दिवसीय तीन दिवसीय कार्यक्रम जो है अभी जो चलेगा, तो हम सभी से पूरा रिक्वेस्ट करेंगे। अभी हमारी बहन जी ने कहा भी सुबह में 6 बजे 6:15 बजे आइए, और हमें पूरा विश्वास है हम सभी पूरा लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं। अंत में मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी समर्पित भाई बहनों को भी धन्यवाद देता हूं जो निस्वार्थ भाव से समाज को जागरूक करने का कार्यभार लगातार कर रहे हैं। ओम शांति। धन्यवाद।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निज जीवन में निष्पक्षपात से कैसे निर्णय लिया जा सकता है, निष्पक्षपाती होके भी खुद के जीवन को संवार के प्रशासन को कैसे चलाया जा सकता है, अपना प्रैक्टिकल अनुभव बहुत अच्छी तरह सुनाया आपने भाई जी का, और एक बार दिल से धन्यवाद। अभी हमारे बीच हमें इंस्पायर करने के लिए मैं बुला रही हूँ जिन्होंने हमारी संस्था के संस्थापक पूज्य प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को अपने आंखों से देखा, उनके हाथों में पले बड़े अनुभव किया। ऐसे अनुभवी राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी जो पिछले 7 दशकों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, समर्पित रूप से अपने हेडक्वार्टर में मीडिया विंग भी संभाल रहे हैं, साथ में विशेष हमारे संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है आप, तो आपसे निवेदन है हम सभी को अपने इंस्पिरेशन से लाभान्वित करें।
सत्यम शिवम सुंदरम। पहले मैं आप सबके पेशेंस कहे, सहन शक्ति कहे, थोड़ा सा लंबा चल रहा था तो आप सभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। मैं भी भाग्यशाली हूं कि आप सबके साथ बैठकर सुनने की मुझे सौभाग्य मिला। तो मैं यही कहूंगा कि आप इस देश की प्रगति का, विकास का, जो भी आज विश्व गुरु बनने का जो स्वप्न है, उस कार्य में किसी न किसी प्रकार से आप लोग सहयोगी है ही, और यहां भी आप आए हैं वो भी प्रभु की कृपा से ही आप सभी यहां तक पहुंचे हैं, तो उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आपका घर है, क्योंकि हम सब का ईश्वर तो एक ही है, दो नहीं है, हम सब उनके बच्चे हैं। जो भी शक्ति या शांति आज हम यहां से प्राप्त करेंगे वो भी ईश्वर द्वारा ही हमको मिलेगा, और वैसे भी आप यहां आते ही ये अनुभूति कर लिया है कि शांति हम सबका एक जन्मसिद्ध अधिकार है। अशांति इस दुनिया का है जो अभी इस समय पर चाहे विश्व में चाहे हमारे देश में प्रकृति द्वारा भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब आप देख रहे हैं, और आप सबके ऊपर ही सबसे बड़ी जवाबदारी है कि भारत में फिर से शांति हो और सबको सुख भी हो, ये आप लोगों का हाथ में है। तो इसीलिए आप 2-3 दिन यहां रहेंगे तो उसमें शांति का अनुभव तो आप करेंगे ही, साथ साथ शांति का एक संदेश जो है जो इस समय पर आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो प्रति वर्ग को मिले इस भारत में, ये हम लोगों को ध्यान रखना होता है। क्योंकि आप जानते हैं तो एक क्रांति और हमारा देश में अभी हो रहा है जिसको हम सनातन कहते हैं। तो हमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का प्रचार प्रसार और हमारे जीवन में उसको लाने का हम प्रयास करते हैं। तो जब तक आध्यात्मिक हमारे जीवन में नहीं होता है, भारतीय संस्कृति विश्व तक पहुंच नहीं सकते हैं। जो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लगभग 140 देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, तो इसीलिए आप सभी भी अपने अंदर शांति आनंद प्रेम का अनुभव यहाँ करते हुए हम सब एक ईश्वर के बच्चे ये संदेश सारे विश्व को देने का आप निश्चित रूप से अपने अनुभव से करेंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपना दो शब्द समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। बड़ों के बात महावाक्य सत्वचन कहते हैं। भाई साहब ने बहुत कम शब्दों में अपने लंबे जीवन का अनुभव हम सभी को सार स्वरूप में सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने कहा आप बहुत देर से बैठे हैं, पेशेंस से बैठे हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। हाथ आगे बढ़ाइए, सभी दाएं हाथ आगे बढ़ाइए, दाएं हाथ राइट हैंड, योर राइट हैंड प्लीज, पीछे लीजिए। वाह 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 वा, क्या बात है। अपने आप के लिए एक बार शाबाशी दे दीजिए। बस अभी हम लास्ट स्टेज में है प्रोग्राम के। हमारे बीच में हमारी संस्था की एडिशनल चीफ और बहुत लंबे समय से इस ईश्वरीय ज्ञान योग के अभ्यास करते हुए देश विदेशों में ईश्वर के संदेश को पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध, जिसको फ्लाइंग एंजल से भी हम जानते हैं, आदरणीय हम सबके प्यारे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के आप चेयरपर्सन हैं। आप अपने दिल के उद्घार अनुभव हमारे सामने रखने के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आदरणीय जयंती दीदी।
ओम शांति। Respected guests on the dais, my sisters and brothers who are responsible for this wing, और हम सबके भाई बहने जो यहाँ बैठे हैं, और विशेष नेपाल से जो डेलीगेशन आए हैं, आप सबका स्वागत। बहुत खुशी है कि जिस स्पीकर ने बातचीत की वो अपने अनुभव से यही हमें बताते रहे कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बहुत उन्हों को सहयोग प्राप्त हुआ है। तो उसी से ही आप समझ सकते हैं कि 3 दिन में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं आपसे 2 मिनट की ही एक बात बताती हूँ। आप एक पिरामिड को याद करो और उस पिरामिड में आप सोचो कि what should be at the top? क्योंकि administration और आज के जीवन की uncertainties वो तो आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं, अनुभव कर रही हैं, तो उसमें हम कैसे सब बातों को जगल करके सब कुछ अच्छी तरह से अपनी जिम्मेवारी भी पालन कर सके, अपनी खुद की भी उन्नति हो, देश के लिए भी की प्रगति हो, तो हम किस तरह से ये सोचें? तो बहुत सिंपल तरीका है। बहुत करके लोग कहेंगे कि कारोबार पहले, और परमात्मा शिव ने हमें बताया है कि नहीं, कारोबार पहले नहीं। पिरामिड के ऊपर जो है वो है मैं और बाप, निराकार परमपिता परमात्मा के साथ जो मेरा संबंध है। यदि मैं उस बात को ठीक रखती हूँ, हर रोज थोड़े समय के लिए परमात्मा से शक्ति धारण करके जो आंतरिक अपने अंदर गुडनेस है, ओरिजिनल प्योर क्वालिटीज है, उसको इमर्ज करती हूँ, तो जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है रिलेशनशिप्स। तो यदि हम आत्मा के अंदर वो शक्ति आई है परमात्मा की, तो रिलेशनशिप्स, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो काम वाली बात हो, चाहे वो सोशल हो, सब रिलेशनशिप्स हमारे बहुत अच्छी तरह से स्मूथली चलते हैं। यदि अपने अंदर कुछ कमजोरी है, कमी है, तो रिलेशनशिप्स नीचे ऊपर होते हैं। इज दैट राइट? घर की भी बात हो, काम की भी बात हो, खुद के अंदर हर प्रकार से परमात्म शक्ति है तो सब रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ चलते हैं। तो उस आधार पर फिर जो कारोबार है वो बहुत अच्छी तरह से चलता, नॉट जस्ट इफिशियंटली बट विथ एक्सलेंस। तो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं खुद परमात्मा से शक्ति लेकर के अपने रिलेशनशिप्स को भी बहुत सुंदर बना करके रखूं, और उस आधार पर जो हर प्रकार से सहयोग की आवश्यकता होती तो उसमें हमारा कारोबार भी बहुत ही सुंदर चलता। तो आप यहाँ परमात्मा के घर पे आए हैं, जहाँ पर आप वरदान लेके जाएंगे, सहज योगी, पवित्र योगी, कर्म योगी, और आपके जीवन में वो एक के साथ संबंध रहेगा तो आपको सर्व शक्तियाँ, सर्व प्राप्तियाँ अभी ही जीवन में अनुभव होंगी। भविष्य में तो जो होगा वो देख लेंगे, परंतु अब इस जीवन में आत्मा हर प्रकार से संतुष्ट होकर के औरों को भी संतुष्ट करके अपने कारोबार को बहुत सुचारू रूप से संभाल सकती है। आप बहुत धीरज से बैठी हैं बहुत समय से, धन्यवाद। ओम शांति।
आदरणीय जयंती दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अमृत वचनों को, स्वर्णिम शब्दों को बहुत सुंदर तरीके से पिरो के हमें बताया कि कैसे हम यहाँ से क्या लेके जाए, सहज योगी बन के हम जाए, इसी की इंस्पिरेशंस ले। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार शैलेश भाई जी को इन्वाइट करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग के सेक्रेटरी हैं, आप गोधरा से आए हैं, अभी आप सभी का अभिवादन करेंगे। साथ में बहनों से निवेदन है, मंचासीन सभी मेहमानों के लिए भगवान के घर से गिफ्ट्स भी, ईश्वरीय सौगात भी प्रदान करें।
ओम शांति। समय बहुत हो चुका है, जितना हो सके मैं संक्षिप्त में आभार दर्शन करूंगा। सर्वप्रथम सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर्स, परमपिता परमात्मा, परम शिक्षक जो है परमात्मा के प्रेरणा से ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, तो सबसे पहले मैं उनसे नमन करता हूँ। और आज के जो उद्घाटन सत्र के अंदर कार्यक्रम की शुरुआत में आशा दीदी ने और अंत में हमारे परम श्रद्धेय जयंती दीदी ने जो प्रेरणाएं दी है, तो आप दोनों दीदियों के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। हमारे जो हरीश भाई जी है, जो हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है समस्त भारत में प्रशासनिक क्षेत्र के सेवाओं का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 2 साल से सेवा की धूम मचाई है और वर्ष में एक बार विदेश में भी जाकर सेवा सबको साथ में लेकर करते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय भ्राता करुणा जी जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है, और आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी ने जो प्रेरणाएं दी है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने भी बहुत सारी बातें बताई है, इसलिए आपको भी बहुत शुक्रिया है आपका। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी ने भी बहुत अच्छी तरह से हमको कार्यक्रम के बीच में मेडिटेशन कराया, आपका भी
धन्यवाद। साथ साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो है धनलक्ष्मी जी बगिनी, विभूति रंजन चौधरी जी और राजू मैत्री जी ने बहुत ही अच्छी बातें टिप्स प्रशासनिक क्षेत्र के लिए बताई, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में जो बालिकाओं ने नृत्य किया तो बालिकाओं को भी अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन किया वीणा बहन जी ने, तो आपको भी अभिनंदन है। और इस शांतिवन कॉम्प्लेक्स है उसके जो सभी डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स हेड और सभी सेवादारी है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे संयुक्त प्रशासिका मुन्नी दीदी जी का भी धन्यवाद है। और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर जो स्वास्थ्य के कारण हमारे बीच भोपाल से अवधेश बहन जी नहीं आई है, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं भेजी है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जो भारत वर्ष के और नेपाल से ब्रह्मा कुमारी सेंटर की इंचार्ज बहनों ने आप सबको निमंत्रण देकर यहाँ भेजा, तो वो बहनों का और आप सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। और अंत में मैं ये कहता हूँ कि मेडिटेशन इज द इलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत है। यहाँ जाने के बाद आप हमारे सेवा केंद्र जो मेहमान आए हैं वो जाकर उसकी विधि सीखे, प्राप्ति सीखे। अंत में आप सभी का पुनः धन्यवाद, जोरदार तालियों से हम सभी का धन्यवाद करते हैं। किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा करना। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश भाई जी का। पुनः आप सभी को याद दिलाती हूँ, कल सवेरे 6:15 बजे से कॉन्फ्रेंस हॉल में शिविर शुरू होगा। स्पेशल करके डॉक्टर दिनेश जी आए हैं आपको एक्सरसाइज सिखाने, मिस नहीं कीजिएगा। अभी 2 मिनट सभी शांति में बैठ के उस पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, कल के लिए प्रेरणाएं लेते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 2 मिनट के लिए सभी बैठ जाइए, परमात्मा को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन यहाँ पर करेंगे। ओम शांति।